आगे सबक देखिए भाई, व इन तज़व्वजत बिइज़्नि मौलाहा थुम्मा उअतिकत फलहल खियारु हुर्रन काना ज़ौजुहा औ अब्दा لقوله عليه الصلاة والسلام لبريرة رضي الله تعالى عنها حين اعتقت ملكت بزعك فاختاري فالتعليل بملك البزع صدر مطلقا فينتظم الفصلين والشافعي رحمه الله تعالى يخالفنا فيما إذا كان زوجها حرا. भाई गुज़श्ता सबक में साहिबे हिदाया ने आपको बतलाया था कि अगर आका अपनी बांदी का निकाह करवा दे किसी शख्स से और फिर खावंद के सोहबत करने से पहले ही आका अपनी इस बांदी को कत्ल कर दे तो इमाम साहिब के नजदीक आका को बांदी का महर नहीं मिलेगा, इसलिए क्योंकि आका जो है वो मानेअ बन गया बांदी को हवाले करने से, तो लिहाजा आका से भी उसके हक यानी बांदी के महर को रोक लिया जाएगा. जबकि साहिबैन फरमाते हैं कि नहीं, आका को बांदी का महर दिया जाएगा और वो इसको कियास करते हैं तबई मौत पर, और तबई मौत के अंदर तो बिल इत्तेफाक भाई अगर औरत का सोहबत से पहले इंतकाल हो जाए तो फिर खावन पर महर पूरा वाजिब हो जाता है. और नीज वो फरमाते हैं साहिबैन के ये जिसको कत्ल किया जाता है ये भी अपने मुकर्रा वक्त पर ही मरा है, मौत का एक वक्त मुकर्रर है और ये ऐन अपने मुकर्रा वक्त पर ही मरा है, तो ये इसी तरह हो गया जैसे किसी अजनबी ने इसको कत्ल किया हो, और अजनबी के कत्ल की सूरत में तो बिल इत्तेफाक आका को महर मिलता है, तो यहां पर भी आका को महर मिलेगा. तो ये आका का कत्ल भी किसकी तरह हुआ? अजनबी के कत्ल की तरह. और अजनबी का कत्ल किसकी तरह है? तबई मौत की तरह है, और तबई मौत में तो महर देना पड़ता है, लिहाजा आका के कत्ल की सूरत में भी महर देना पड़ेगा. जबकि इमाम साहब फरमाते हैं कि आका मानेअ बन गया बांदी के सुपुर्द करने से तो आका से भी इसका हक यानी महर रोक लिया जाएगा. भाई ये इसी तरह है जैसे अलायासुबिल्ला आजाद औरत मुर्तद हो जाए तो फिर इस सूरत के अंदर निकाह फसख हो जाता है और इस औरत को महर नहीं मिलता क्योंकि ये मानेअ बन गई. भाई ये मनाफिया को खावंद के हवाले करने से खुद मानेअ बन गई है, इसके इर्तेदाद की वजह से निकाह फसख हुआ है तो इस औरत को महर नहीं मिलता. तो जैसे ये औरत मानेअ बनी थी मनाफे के सुपुर्द करने में तो इसको महर नहीं मिला, तो ऊपर वाले मसले के अंदर भी आका जो है वो मानेअ बन गया है लिहाजा आका को भी महर नहीं मिलेगा. भाई और नी साहिबैन फरमाते थे कि यह कत्ल भी जो है तबई मौत की तरह है, तो उसका भी जवाब दिया कि दुनियावी अहकाम के एतबार से कत्ल जो है उसको तबई मौत नहीं शुमार किया जाता बल्कि उसको एहलाक शुमार किया जाता है कि एक शख्स ने दूसरे को हलाक कर दिया है, उसकी जान ले ली है, चुनांचे इसी वजह से फिर अगर जानबूझकर कत्ल किया हो आला कत्ल से तो किसास आता है और अगर जानबूझकर कत्ल न किया हो तो फिर दियत आती है. मालूम हुआ कत्ल जो है वो दुनियावी अहकाम के एतबार से उसको इतलाफ शुमार किया जाता है, एहलाक शुमार किया जाता है, तबई मौत शुमार नहीं किया जाता. लिहाजा यहां पर महर के सिलसिले में भी आका ने ये जो बांदी को कत्ल किया है इस कत्ल को एहलाक ही शुमार किया जाएगा, इसको तबई मौत शुमार नहीं किया जाएगा. और इसी तरह फिर मसला जिक्र फरमाया कि अगर एक आजाद औरत जो है वो अपने आप को कत्ल कर दे रुखसती से पहले ही तो इस सूरत के अंदर इस औरत को महर मिलेगा. भाई जबकि इमाम जुफर रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि नहीं, जिस औरत ने खुदकुशी की है वो भी मानेअ बन गई है मनाफिया को खावंद के सुपुर्द करने से, लिहाजा इसको महर नहीं मिलेगा. बात समझ में आ गई, औरत का तो इंतकाल हो चुका है, महर उसके वारिसों को मिलना है भाई, लेकिन इमाम जुफर फरमाते हैं कि महर नहीं मिलेगा क्योंकि औरत मानेअ बन गई है. वो इसको कियास करते हैं मुर्तद्दा पर और उस बांदी पर जिसे आका ने कत्ल किया हो, जैसे मुर्तद्दा मानिया बन जाती है उसको महर नहीं मिलता, इसी तरह इस औरत को भी नहीं मिलेगा। और जैसे आका अपनी बांदी को कत्ल कर दे तो उसको महर नहीं मिलता क्योंकि वो मानिया बन गया है, तो यहां भी यह औरत जिसने खुदकुशी की है यह मानिया बन गई है मुनाफे के सुपुर्द करने से, लिहाजा इसको भी महर नहीं मिलेगा। जबकि हम जवाब देते हैं कि नहीं, ये जिस औरत ने खुदकुशी की है इसको महर मिलेगा, इसलिए क्योंकि ये जो आदमी अपनी जात पर जो जिनायत करता है, अपनी जात को जो नुकसान पहुंचाता है, उस पर कोई दुनियावी हुक्म मुरतब नहीं होता, उस पर कोई दुनियावी हुक्म मुरतब नहीं होता। जबकि मुर्तद होना या आका का अपनी बांदी को कत्ल करना, उस पर दुनियावी अहकाम मुरतब होते हैं भाई। चुनांचे मुर्तद्दा का निकाह फसख हो जाता है और नीज उसको कैद में डाला जाता है यहां तक कि वो दोबारा मुसलमान हो जाए या इसी कैद में उसका इंतकाल हो जाए। तो देखा, मुर्तद्दा के लिए भी दुनियावी अहकाम हैं, और इसी तरह आका अगर अपनी बांदी को कत्ल कर दे तो वहां पर भी दुनियावी अहकाम हैं, वहां किसास और दियत तो नहीं आएगी लेकिन कफारा आ जाएगा भाई। आका पर क्या वाजिब होगा? अपनी बांदी या गुलाम के कत्ल पर कफारा वाजिब होता है, और कफारा कत्ल मैंने आपको बतलाया था कि एक मोमिन गुलाम या बांदी को आजाद करना पड़ेगा या 60 रोजे मुसलसल रखना पड़ेंगे भाई, तो आका पर कफारा आएगा। अलबत्ता किसास और दियत आका पर नहीं आएंगे, इसलिए क्योंकि किसास और दियत के लिए मुतालिब चाहिए, कोई मुतालबा करने वाला, और यह बांदी तो आका की अपनी थी तो मुतालबा करने वाला भी यही खुद हुआ, और कत्ल भी इसने किया है तो मुतालब भी यही हुआ, यानी जिससे मुतालबा किया जाएगा किसास और दियत का। तो इस सूरत में मुतालिब और मुतालब का एक होना लाजिम आता है, इसलिए आका पर किसास और दियत नहीं आएगी भाई। और नीज ये भी याद रखना भाई, ये तो मैंने अकली वजह जिक्र कर दी, और ये भी याद रखना हदीस में भी आता है कि आका को अपने गुलाम की वजह से कत्ल नहीं किया जाएगा भाई। और नीज आका पर इसलिए भी किसास नहीं आएगा, इसलिए क्योंकि यह बांदी आका की ममलूक थी भाई, जिसको इसने कत्ल किया है, तो आका ने बांदी को कत्ल करके अपना माल जाया किया है, अपना नुकसान किया है, लिहाजा आका पर किसास नहीं आएगा भाई। तो अपनी मिल्कियत को तलफ करने और अपनी मिल्कियत को हलाक करने की वजह से आका पर किसास नहीं आएगा भाई। ये इसी तरह है जैसे बाप अपने बेटे को कत्ल कर दे, बाप अपने बेटे को कत्ल कर दे तो याद रखो वहां भी किसास नहीं आता, क्योंकि याद रखो ये जो हुदूद और किसास हैं ये अदना शुबे से भी साकित हो जाते हैं। हुदूद यानी वो शरई सजाएं जो अल्लाह की तरफ से मुकरर हैं, और इसी तरह जो किसास है ये शुबे की वजह से साकित हो जाया करते हैं। तो बाप अगर अपने बेटे को कत्ल कर दे तो वहां शुबहे मिल्क आता है, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी ने आकर अपने बेटे की शिकायत की कि वो मुझसे अपना माल छुपा कर रखता है, रोक कर रखता है, तो हुजूर अलैहि सलाम ने उनके बेटे को बुलवाया और उनसे कहा अंता व मालुक ली अबी का, तू और तेरा माल दोनों तेरे बाप के हैं। तो देखो इस हदीस की वजह से शुबहे मिल्क आ गया कि बेटा भी क्या है, बाप की मिल्कियत है, तो इस शुबह मिल्क की वजह से अब बाप पर से किसास साकित हो जाएगा। तो जब शुबह मिल्क की वजह से किसास साकित हो जाता है तो इस मसले के अंदर तो आका ने अपनी बांदी कत्ल की है जो हां शुबह मिल्क नहीं है बल्कि बाकायदा उसकी अपनी मिल्क है, वो उसका अपना माल है। तो जब शुबह मिल्क की वजह से किसास साकित हो जाता है तो अपनी मिल्कियत होने की सूरत में तो बतरीके औला किसास साकित हो जाएगा। बात समझ में आ गई? और नीज इसलिए भी किसास बाप से साकित हो जाता है, इसलिए क्योंकि कुरान में अल्लाह फरमाते हैं वालिदैन के बारे में फला तकुल लहुमा उफ़िन, कि अपने वालिदैन को उफ भी ना कहो। मालूम हुआ वालिदैन को अदना तकलीफ देने से भी औलाद को मना किया गया है। तो अगर बेटे के कत्ल की वजह से बाप से किसास लिया जाए तो फिर इस सूरत में जब यकीनन जब बाप को कत्ल किया जाएगा तो बाप को तकलीफ होगी भाई, और यह तकलीफ किसकी वजह से आई? बेटे की वजह से, क्योंकि बेटा इस किसास का सबब बन रहा है। तो लिहाजा गोया ये तकलीफ बेटे की तरफ से पहुंच रही है, और बाप को तो उफ कहने से भी मना किया गया है चे जायके कि उसको बेटे की वजह से कत्ल किया जाए और अजीम तकलीफ दी जाए, तो इसलिए भी बाप पर किसास नहीं आएगा भाई। उसके बाद दूसरा मसला हमने यह पढ़ा था कि अगर कोई शख्स बांदी से निकाह कर लेता है तो फिर उससे अजल करता है। अजल कहते हैं कोई ऐसा तरीका इख्तियार करना जिससे हमल न ठहरे, यानी उसकी बीवी हामिला न हो। तो ये जो अजल करने में इस खावंद को आका से इजाजत लेना पड़ेगी या इस बांदी से इजाजत लेना पड़ेगी, तो साहिबैन फरमाते हैं कि इस बांदी से इजाजत लेना पड़ेगी, इसलिए क्योंकि ये जो वती करता है खावंद, ये वती इस बांदी का भी हक है। हत्ता कि अगर खावंद वती न करे तो बांदी काजी के पास जाकर अपने इस हक के लिए मुतालबा कर सकती है। तो यह बांदी इस हक में आजाद औरत की तरह हुई, और जैसे वो काजी के पास जाकर मुतालबा कर सकती है, यह बांदी भी मुतालबा कर सकती है। और आजाद औरत के अंदर तो बिल इत्तेफाक खावंद को बीवी से इजाजत लेना पड़ेगी अजल के लिए, क्योंकि औलाद बीवी का भी हक है, सिर्फ खावंद का हक नहीं है बल्कि बीवी का भी हक है। तो आजाद बीवी से अजल करने में खावंद को बीवी से इजाजत लेना पड़ती है, तो इसी तरह इस बांदी से भी खावंद को इजाजत लेना पड़ेगी अजल के अंदर। जबकि इमाम साहब फरमाते हैं कि नहीं, ये जो बांदी से औलाद होती है ये उस आका का हक है, ये उस आका के गुलाम और बांदियां शुमार होते हैं, तो इस बांदी से पैदा होने वाली औलाद आका का हक है, लिहाजा यहां खावंद को आका से इजाजत लेना पड़ेगी। और इन्नीस कहते हैं इसके जरिए फर्क आ गया मनकूहा बांदी और मनकूहा आजाद औरत के दरमियान भी, कि आप एक को दूसरे पर कयास नहीं कर सकते, इसलिए क्योंकि दोनों में फर्क है। मनकूहा आजाद औरत जो है उसके अंदर औलाद उसका अपना हक है, जबकि मनकूहा बांदी के अंदर जो औलाद है वो उसके आका का हक है, लिहाजा इस बांदी को आजाद औरत पर कयास नहीं किया जाएगा क्योंकि दोनों में फर्क है। भाई अब आइए आज के सबक पर। व इन तज़व्वजत बिइज़्नि मौलाहा सुम्मा उतिकत फलहल खियारु हुर्रन कान ज़ौजुहा औ अब्दा। भाई ये खियार इत्क का मसला आ गया। इंदल अहनाफ बांदी को अगर आका आजाद करे और वो बांदी मनकूहा है तो उसको जिस मजलिस में अपनी आजादी की खबर पहुंचे उस मजलिस के अंदर शरीयत ने उसको इख्तियार दिया है वो अपने निकाह को फसख कर सकती है भाई। और इस इख्तियार को याद रखो खियार इत्क कहते हैं। वजह यह है कि हमारे नजदीक ये जो तलाकें हैं इनका ताल्लुक औरत से होता है। अगर बीवी आजाद औरत है तो खावन जो है वो तीन तलाकों का मालिक होता है, और अगर बीवी बांदी हो तो खावन दो तलाकों का मालिक होता है। तवज्जो है। जबकि इमाम शाफी रहमतुल्लाह वगैरह के नजदीक तलाकों का ताल्लुक बीवी से नहीं होता बल्कि खावंद से होता है। अगर खावंद आजाद आदमी हो तो वो तीन तलाकों का मालिक होता है, बीवी चाहे आजाद हो या बांदी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इमाम शाफी रहमतुल्लाह के नजदीक तलाकों का ताल्लुक किससे है? खावंद से है, आदमी से है। अगर खावंद आजाद आदमी है तो वो तीन तलाकों का मालिक है, और अगर खावंद गुलाम है तो वो अपनी बीवी पर दो तलाकों का मालिक है। जबकि इंदल अहनाफ तलाक का ताल्लुक औरत से है, औरत आजाद है तो खावंद तीन तलाकों का मालिक, और औरत अगर बांदी है तो खावंद दो तलाकों का मालिक है। तो हमारे नजदीक मुतलकन जो भी मनकूहा बांदी हो जब उसको आजादी मिलेगी तो पहले खावन दो तलाकों का मालिक था, और अब जब ये आजाद औरत बनेगी तो खावन तीन तलाकों का मालिक हो जाएगा। तो बीवी के ऊपर खावन की मिल्कियत बढ़ रही है, तो इस इज़्दियाद मिल्क की वजह से शरीयत ने औरत को यानी बांदी को हक दिया है, वो इस निकाह को फसख कर सकती है। तो बांदी को जिस मजलिस के अंदर अपनी आजादी की इत्तला मिले उसी मजलिस के अंदर उसको इख्तियार है, वो अपने निकाह को फसख कर सकती है। उसके ऊपर खावंद की मिल्कियत बढ़ रही है, वो इस मिल्कियत को बढ़ने न दे, इसको दफा कर दे, यानी निकाह ही को क्या कर दे? फसख कर दे। तो हमारे नजदीक खियार इत्क मुतलकन हर मनकूहा बांदी को मिलेगा, चाहे उसका खावंद आजाद हो चाहे उसका खावंद गुलाम हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तलाकों का ताल्लुक खावंद से नहीं होता बल्कि किससे होता है? बीवी से होता है और बीवी पहले बांधी थी, खावन दो तलाकों का मालिक था, अब आजाद हो रही है तो खावन तीन तलाकों का मालिक बन जाएगा, तो खावन की मिल्कियत उसके ऊपर बढ़ रही है। तो इस इज़्दियादे मिल्क को रोकने के लिए, इस मिल्कियत के बढ़ने को रोकने के लिए शरीयत ने उसको खियारे इत्क दिया है, वो उसी मजलिस में अपना निकाह फसख कर सकती है। बात समझ में आ गई। मुतलकन जो भी मनकूहा बांदी आजाद होगी उसको उस मजलिस में खियारे इत्क हासिल होगा। जबकि इमाम शाफी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि तलाक का ताल्लुक मर्द से होता है, औरत से नहीं। खावंद आजाद है तो वो तीन तलाकों का मालिक है, और अगर खावंद गुलाम है तो वो अपनी बीवी पर दो तलाकों का मालिक है। लिहाजा वो फरमाते हैं कि मुतलकन हर मनकूहा बांदी को खियारे इत्क नहीं मिलेगा, बल्कि सिर्फ उस बांदी को खियार इत्क मिलेगा जिसका खावंद गुलाम हो, जिसका खावंद गुलाम हो। एक बांदी को आका ने आजाद कर दिया और उसका निकाह एक गुलाम से हुआ था भाई, तो इस बांदी को खियार इत्क मिलेगा भाई। और नीज हमारे नजदीक तो इल्लत क्या थी कि खावंद की मिल्कियत बीवी पर बढ़ रही थी, दो के बजाय तलाकें तीन हो रही थी भाई। पहले औरत के गले में दो रस्सियां थीं तो अब कितनी हो जाती, तीन हो जाती, तो यह कैसी आजादी है कि उसके गले में रस्सियां बढ़ गई, उस पर मिल्कियत बढ़ गई, लिहाजा शरीयत ने उसको खियारे इत्क दे दिया। जबकि इमाम शाफी रहमतुल्लाह वगैरह के नजदीक इसकी इल्लत आदम कफात है, क्योंकि जब बांदी आजाद हो जाएगी और इसका खावंद गुलाम है तो ये इसका खावंद इसका कुफ ना रहा, इसका हम पल्ला और इसके बराबर का ना रहा, क्योंकि आजाद का तो बड़ा ऊंचा मकाम है। तो बीवी हुई आजाद और खावंद क्या हुआ गुलाम, तो दोनों में कफात नहीं रही, गुलाम उसके बराबर का ना रहा, ये उससे आला हो गई, लिहाजा इसलिए शरीयत ने इसको इख्तियार दे दिया। तो मालूम हुआ आदम में कफात सिर्फ किस सूरत में होगी, जब खावंद गुलाम हो। अगर खावंद पहले से ही आजाद है और ये बांदी उसकी मनकूहा है ये भी आजाद हो गई, तो अब तो कफात अभी भी मौजूद है भाई, वो क्योंकि वो भी आजाद है और ये भी आजाद है। तो वो फरमाते हैं कि मुतलकन हर बांदी को खियारे इत्क नहीं मिलेगा, सिर्फ उस बांदी को खियारे इत्क मिलेगा जिसका खावंद गुलाम हो भाई। तो हमारे नजदीक ये मुतलकन हर बांदी को खियार मिलेगा, और हमारे नजदीक इल्लत क्या है, इज़्दियादे मिल्क, खावंद की मिल्कियत उस पर बढ़ रही है, उसकी तलाकें बढ़ रही हैं। जबकि उनके नजदीक इल्लत क्या है, आदम कफात है कि अब दोनों एक दूसरे के कुफ ना रहे, और ये सिर्फ उस वक्त होगा जब इस बांदी का खावंद गुलाम हो। बात समझ में आ गई। तो कहते हैं वह इन तजवजत भी इतनी मौलाहा, और अगर बांदी ने निकाह कर लिया अपने आका की इजाजत से, सुम उतिकत फिर इस बांदी को आजाद कर दिया गया, फलाहल खियार हुर्रन का न जौजुहा औ अबदा, तो इस बांदी को इख्तियार होगा इसका खावन चाहे आजाद हो चाहे गुलाम। देखा मुतलकन बांदी को खियार मिलेगा, खावन चाहे आजाद हो चाहे गुलाम हो भाई। لقوله عليه الصلاة والسلام لبريرة رضي الله تعالى عنها حين اعتقت بوجه حضور علیہ السلام کے فرمان مبارک کے جو آپ نے حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا حين اعتقت جب ان کو آزاد کیا گیا یہ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آزاد فرمایا تھا और इनके बारे में रिवायात में आता है कि हज़रत आयशा फरमाती हैं, यह हाशिए में हदीस दी हुई है कि हज़रत आयशा फरमाती हैं कि कानफी बरीरा था सलासु खिसालिन, कि बरीरा के अंदर तीन खसलतें थीं भाई, तीन बातें थीं, यानी बाकी सब से अलग तीन बातें थीं। वो क्या थीं कि अराद अहलाहा अय्यबीउहा वयश्तरितु वलाअहा, ये किसी और की बांधी थी, इसके घर वालों ने इसको बेचने का इरादा किया, लेकिन शर्त यह लगाई कि वला हमें मिलेगी, वला के हकदार हम होंगे। तो बात समझ में आ गई। वला भी पहले समझ लो यहीं पर भाई, याद रखो वला जो है ये फिका की किताबों में जगह जगह आप पढ़ते हैं, तालिब इलम हैरान होता है पता नहीं वला क्या चीज है। माले वरासत को वला किसे कहते हैं, माले वरासत। आपने पढ़ा है कि जब किसी शख्स का इंतकाल होता है तो सबसे पहले उसके कफन दफन का इंतजाम किया जाएगा उसके माल में से, फिर उसके बाद उसके सारे कर्जे अदा किए जाएंगे उसके माल में से। और अगर उसके कर्जे दो किस्म के हैं, कुछ देने सेहत हैं और कुछ देने मरज हैं, तो अव्वलन देने सेहत अदा करेंगे, अगर पैसे बच गए तो फिर देने मरज भी अदा कर दिया जाएगा। उसके बाद जो माल बच गया है तो फिर वो उसके सुलुस के अंदर अगर उसने कोई वसीयत की है तो वो वसीयत नाफिज की जाएगी। अब चौथे नंबर पर वारिस आ गए। सबसे पहले कफन दफन था, फिर कर्जे थे, फिर सुलुस के अंदर वसीयत थी, अब बाकी का माल वारिसों में तकसीम होगा। और वारिसों में आपने पढ़ा है कुछ जबील फुरूज हैं जिनके बाकायदा हिस्से मुकरर हैं कुरान और हदीस के अंदर। किसी को सुलुस मिलता है, किसी को निसफ मिलता है, किसी को रुबो वगैरह मिलता है, तो ये बाकायदा जिनके हिस्से मुकरर हैं इनको जबील फुरूज कहते हैं। फुरूज हिस्से, हिस्से जबील फुरूज हिस्सों वाले, तो ये कुछ हिस्सों वाले हैं। और फिर जबील फुरूज को माल देने के बाद जो माल बच जाए वो फिर आसाबात में तकसीम होता है। और आसाबात आपने पढ़ा है कि वो मर्द हैं, आसबा बिनफसी ही, यानी वो मर्द हैं कि जिनके साथ मैयत का रिश्ता जोड़ने में दरमियान में किसी औरत का वास्ता ना आए, जैसे बेटा है, पोता है, पड़पोता है। देखा, बेटे के साथ मैयत का बराह रास्त वास्ता है, दरमियान में किसी औरत का वास्ता नहीं। पोता है, देखो पोते के साथ बेटे के जरिए रिश्ता है, फिर पड़ पोता है उसके साथ रिश्ता किसके जरिए, बेटे के जरिए और पोते के जरिए, तो देखो दरमियान में कहीं औरत नहीं आ रही। इसी तरह मैयत का बाप है, दादा है, परदादा है, देखो यहां भी दरमियान में किसी औरत का वास्ता नहीं। या इसी तरह मैयत के भाई हैं, भाई अब देखो मैयत के भाई, इनके साथ बाप के जरिए रिश्ता है, मां के जरिए भी इनके साथ रिश्ता है, लेकिन जब बाप मौजूद है तो उसी को देखा जाएगा, तो बाप के वास्ते से इनके साथ रिश्ता है, दरमियान में किसी औरत का वास्ता नहीं। इसी तरह दादा की जो औलाद है, यानी बाप के भाई बहन, उनके साथ दादा के जरिए रिश्ता है भाई, दरमियान में किसी औरत का वास्ता नहीं है भाई। तो बाप के भाई जैसे चचा वगैरह हैं, तो इनके साथ दादा के वास्ते से रिश्ता है, दरमियान में किसी औरत का वास्ता नहीं है। ये सब आसाबात कहलाते हैं। तो जबील फुरूज को देने के बाद बाकी माल आसाबात में तकसीम होगा। आपने पढ़ा है बेटा भी आसाबात में से है, बात समझ में आ गई। तो अगर बेटा मौजूद है तो वो सारा माल फिर बेटा ले जाएगा, और अगर बेटे के साथ बेटियां भी हैं तो फिर बेटे को बेटियों से दुगना हिस्सा मिलेगा। तफसील आप पढ़ चुके होंगे। तो पहला दर्जा जबील फुरूज का, उसके बाद आसाबात, और ये आसाबात नसबी हैं, इनके साथ नसब वाला रिश्ता है। और उसके बाद तीसरे दर्जे पर आसाबाए सबबी का नंबर आता है। आसाबाए सबबी वो मुअतिक को कहते हैं, आजाद करने वाला। फर्ज करो ये जो मैयत है ये किसी जमाने में गुलाम था या बांदी थी, और फिर इसको किसी ने आजाद किया था, तो वो जो मुअतिक है, मुअतिक जिसने आजाद किया था इसको, वो इसका आसबाए सबबी है, वो इसका आसबाए सबबी। तो लिहाजा अब उसका दर्जा आ गया। अगर माल जबील फुरूज में तकसीम कर दिया, जो माल बचा वो आसबाए नसबी को देना है, लेकिन आसबाए नसबी कोई नहीं, तो फिर ये सारा माल आसबाए सबबी को मिल जाएगा। और आसबाए सबबी कौन है, मुअतिक है, जिसने मैयत को आजाद किया था। फर्ज करो किसी वक्त वो मैयत क्या थी, गुलाम थी, अगर गुलाम नहीं थी फिर तो इसका कोई मुअतिक नहीं होगा भाई। तो बहरहाल अगर ये मुअतिक हुआ तो ये माल इसको मिल जाएगा तीसरे नंबर पर। पहला दर्जा जबील फुरूज का, फिर आसबाए नसबी का, और फिर इस आसबाए सबबी यानी मुअतिक का। और ये जो मुअतिक को माल मिलेगा इसको वला कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, वला। तो हम हदीस पढ़ रहे थे, हज़रत आयशा फरमाती हैं कि बरीरा रजी अल्लाह ताला अन्हा में तीन बातें थी भाई। एक तो ये कि उसके घर वाला ने उनको बेचने का इरादा किया, लेकिन उन्होंने शर्त लगाई वला हमें मिलेगी जी। वला हमें, यानी वला के हकदार हम होंगे, अगर कोई और माल लेने वाला ना हुआ तो माल वरासत हम लेंगे। तो देखो कहते हैं कि हजरत बरीरा में तीन खसलतें थीं, अरादा अहलुहा अन यबीउहा वयश्तरितु वलाअहा, इसके घर वालों ने इरादा किया इनको बेचने का, वयश्तरितु वला आहा, और उन्होंने उसकी वला की शर्त लगाई कि वला हमें मिलेगी इस शर्त पर हम बेचेंगे। तो फजकर तु जालिका ली रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो मैंने ये हुजूर अलैहि सलाम से जिक्र फरमाया। हज़रत आयशा का इरादा था कि मैं खरीद कर आजाद करूं, लेकिन उन्होंने वला की शर्त लगाई कि वला हमें मिलेगी, तो हज़रत आयशा ने हुजूर से जिक्र फरमाया। फकालत, हुजूर फरमाने लगे, इश्तरीहा व आतिकीहा फइन्नल वला अलिमन आतका, कि इसको खरीद लो और आजाद कर दो, इसलिए क्योंकि वला तो उसी के लिए होती है जो आजाद करे। यानी इनके शर्त लगाने से कुछ नहीं होता, बस खरीद लो और आजाद कर दो, वला को तुम्हें ही मिलेगी क्योंकि तुम हो मौतिका इसको आजाद करने वाली। तो कहते हुजूर ने फरमाया, इश्तरीहा व आतिकीहा, इसको खरीद ले और आजाद कर दे, फइन्नल वला अलिमन आतका, वला उसी के लिए होती है जो आजाद करे। व आतकत, और फिर वो आजाद हो गई। हज़रत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला ने खरीद कर उन्हें आजाद कर दिया। फखय्यरहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिन ज़ौजिहा, तो हज़रत बरीरा ये मनकूहा थी भाई, इनका निकाह हुआ था, तो हुजूर ने इनको इख्तियार दिया मिन ज़ौजिहा, इनके खावन से, कि तुम क्या कर सकती हो, तुम्हें इख्तियार है अपने खावन को इख्तियार करो या जुदाई को। फख्तारत नफसहा, तो उन्होंने हज़रत बरीरा ने अपनी जात को इख्तियार किया, यानी जुदाई को इख्तियार किया। वकान अन्नासु यतसद्दकून अलैहा, और लोग इन पर सदका करते थे, यानी इनके पास सदकात वगैरह भेजते थे, इनके पास माल वगैरह था नहीं तो लोग सदकात इनको देते थे। वह युहदी लाना, युहदी वैसे तुहदी होना चाहिए भाई, अहदा युहदी का माना आता है किसी को हदिया देना, तोहफा देना, तो लोग इनके पास सदकात भेजते थे, तो यहां तुहदी वैसे होना चाहिए, बहरहाल मेरी किताब में युहदी है, तो वह युहदी लाना, तो वो हमें तोहफे के तौर पर भेज देती, लोग उनको सदकात के तौर पर चीजें भेजते और वो हमें तोहफे के तौर पर चीज भेज देती थी। तो कहते हैं फजकर तू जालिका लिन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो हज़रत आयशा फरमाती हैं कि मैंने हुजूर अलैहिस्सलाम से यह जिक्र फरमाया। फकाला, तो हुजूर फरमाने लगे, हुआ अलैहा सदकतुं वलना हदिया, यानी उनके लिए तो यह सदका है और हमारे लिए हदिया है। देखा, मालूम हुआ मिल्कियत के बदलने से चीज का हुक्म भी बदल जाता है। हज़रत बरीरा के कब्जे से पहले तो वो सदका है, लेकिन इनके कब्जा करने के बाद जब हमें भेजेंगी तो वो हदिया है भाई। तो तीन खसलतें उनकी जिक्र की भाई, तीन खसलतें, एक तो कि उनके घर वाले वला अपने लिए रखना चाहते थे, हुजूर ने फरमाया वला जो है जो मौतिक है उसी के लिए होती है, और फिर दूसरा उनको हुजूर अलैहिस्सलाम ने खियारे इत्क दिया भाई, और फिर तीसरा कि वो सदकात को लेती थी तो हमें भेजती थी, तो हुजूर ने फरमाया उनके लिए सदका है और हमारे लिए हदिया है भाई। अच्छा, तो ये हजरत बरीरा रजी अल्लाह ताला अन्हा भाई, इनके बारे में याद रखो रिवायात मुख्तलिफ हैं, बाज रिवायात से पता चलता है कि इनके खावंद आजाद आदमी थे, और बाज रिवायात से पता चलता है कि इनके खावंद गुलाम थे। तो इमाम शाफी रहमतुल्लाह उन रिवायात को तरजीह देते हैं कि जिनसे साबित होता है कि वो गुलाम थे, चुनांचे फरमाते हैं देखा इनके खावंद गुलाम थे इसलिए हुजूर ने इनको इख्तियार दिया था, जबकि हम अहनाफ तरजीह देते हैं उन रिवायात को जिनके मुताबिक उनके खावंद आजाद थे भाई। तो कहते हैं لقوله عليه الصلاة والسلام لبريرة رضي الله تعالى عنها حين اعتقت, بوجه حضور علیہ السلام کے فرمان مبارک کے جو آپ نے حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا, حين اعتقت, جس وقت ان کو آزاد کیا گیا, حضور نے فرمایا ان سے, ملکت بزعك فاختاری, توجہ ہے متن پر بھائی, मलकति बुज़ा की फख्तारी, के तू अपने बुज़ा की मालिक बन गई है, फख्तारी तू इख्तियार कर ले, यानी तुझे इख्तियार है कि तू अपने आप को इख्तियार करे अपने खावंद को। फतालील बी मिल्क अल-बुज़ सदरा मुतलकन, तालील कहते हैं इल्लत बयान करना, किसी चीज की इल्लत और सबब बयान करना, यहां पर देखो हुजूर अलैहिस्सलाम ने बाकायदा सबब बयान फरमाया फख्तारी के लिए, तू इख्तियार कर ले, पहले सबब बयान फरमाया मलक थी बुजा की कि तू अपने बुजा की मालिक बन गई है, फख्तारी बस तू इख्तियार कर ले। तो देखो यहां हुजूर अलैहिस्सलाम की ये अल्फाज मुतलक हैं, इनके अंदर हुजूर अलैहिस्सलाम जो इल्लत बयान फरमा रहे हैं कि तू अपने बुजा की मालिक बन गई है, ये मुतलक है, इसमें कोई कैद नहीं है कि चूंकि तुम्हारा खावंद गुलाम है इसलिए तुम मालिक बन गई हो अपने बुजा की, अगर आजाद होता तो तुम मालिक न बनती, ऐसा कोई हदीस में जिक्र नहीं है। हदीस में इख्तियार की इल्लत मुतलकन हुजूर ने जिक्र फरमाई है और अल मुतलक यजरी अला इतलाक ही, मालूम हो मुतलकन हर बांदी को इख्तियार मिलेगा भाई, क्योंकि वो अपने बुजा की मालिक हो गई, उसको आजादी मिल गई भाई। तो हुजूर ने उनसे फरमाया मलक थी बुजा की फख्तारी के तू अपने बुजा की मालिक हो गई है, फख्तारी तो तू इख्तियार कर ले, फतालील बि मिल्किल बुजई, तो हदीस के अंदर जो इल्लत बयान की गई है बुजा के मालिक होने के साथ, सदारा मुतलकन ये मुतलक होकर सादिर हुई है, ये तालील मुतलक होकर सादिर हुई है, इसमें कोई खावंद के गुलाम होने की कैद मौजूद नहीं है। हदीस में यह नहीं है कि तुम इसलिए मालिक बन गई हो क्योंकि तुम्हारा खावंद गुलाम है, नहीं, तालील मुतलक है, बात समझ में आ रही है। तो कहते हैं फतालील बिमिल्किल बुज़ई सदरा मुतलकन, तो ये जो तालील बुज़ा के मालिक होने के साथ जिक्र की गई है सदरा मुतलकन, ये मुतलक होकर सादिर हुई है, मुतलक होकर पेश आई है ये तालील, फयंतज़िमुल फ़सलैनी, तो ये दोनों फसलों को शामिल है, दोनों सूरतों को शामिल है, चाहे खावंद आजाद हो चाहे खावंद गुलाम हो, दोनों सूरतों में यह तालील बनती है कि तू अपने बुजा की मालिक बन गई है, तू अपने आजादी मिल गई है तो अपने बुजा की मालिक बन गई है, फख्तारी तो तू इख्तियार कर ले, तो ये दोनों सूरतों को शामिल है यह इल्लत भाई, दोनों सूरतों में बांदी मालिक बन जाती है अपने बुजा की, लिहाजा उसको इख्तियार मिलेगा भाई। तो ये माना है फयंतज़िमुल फ़स्लैन, तो ये दोनों सूरतों को शामिल होगा, यानी चाहे खावन आजाद हो या गुलाम। व शाफिई रहिमहुल्लाहु तआला युखालिफुना फीमा इदा काना ज़ौजुहा हुर्रा, और इमाम शाफी रहमतुल्लाह हमारी मुखालफत करते हैं उस सूरत में जबकि इस बांदी का खावंद आजाद हो, वो हमारी मुखालफत करते हैं कि बांदी का खावंद अगर आजाद हो फिर बांदी को इख्तियार नहीं मिलेगा, जबकि हमारे नजदीक हर सूरत में बांदी को इख्तियार मिलेगा। तो कहते हैं इमाम शाफी रहमतुल्लाह युखालिफुना, वो हमारी मुखालफत करते हैं, फीमा इदा काना ज़ौजुहा हुर्रा, उस सूरत में जबकि इस बांदी का खावंद आजाद हो, वह हुआ महजूजुन बिही, और उनके खिलाफ हुज्जत कायम की गई है बिही इस हदीस के जरिए, उनके इस खिलाफ हुज्जत कायम की गई है इस हदीस के जरिए भाई। भाई याद रखो हज हुज्जु का माने दलील में किसी पर गालिब आना, दलील पेश करना भी है और किसी पर दलील के जरिए गालिब आना भी है। तो हज हुज्जु से इसमें फाइल क्या बनेगा, हाजुन, यानी दलील के जरिए किसी पर गालिब आने वाला, और महजूज जिस पर दलील के जरिए गालिब आया जाए, तो यह तर्जमा भी आप कर सकते हैं, वह हुआ महजूज उन बिही, और उन पर गालिब आया गया है दलील में बिही इस हदीस के जरिए, इस हदीस के जरिए उन पर दलील में गालिब आया गया है, या आम तर्जमा कर लें वो ज्यादा बेहतर है, वह हुआ महजूज उन बिही, और उनके खिलाफ हुज्जत कायम की गई है बिही इस हदीस के जरिए। وَلِأَنَّهُ يَزْدَادُ الْمِلْكُ عَلَيْهَا عِنْدَ الْعِتْقِ, और नीज इसलिए क्योंकि मिल्कियत जो है वो बढ़ जाती है, अलैहा उस बांदी पर, عند العتق आजादी के वक्त, فَيَمْلِكُ الزَّوْجُ بَعْدَهُ ثَلَاثَةَ طَلَاقَاتٍ, तो खावन उस आजादी के बाद मालिक होता है तीन तलाकों का, فَتَمْلِكُ رَفْعَ أَصْلِ الْعَقْدِ, तो लिहाजा ये औरत अब मालिक होगी किस चीज की, रफ़ أَصْلِ الْعَقْدِ, कि वो असले अकद ही को उठा दे, पूरे अकद ही को क्या कर दे, खत्म कर दे, ताकि इसके ऊपर मिल्कियत न बढ़े भाई। تو کہتے ہیں فتم لکھو رفع اصل العقدی, تو یہ عورت مالک ہوگی رفع اصل العقدی کی, یہ اصل عقد کو ہی اٹھا دے یعنی اس کو ختم کر دے, اس کو فسخ کر دے. دفعا لزیادتی, اس زیادتی کو دور کرنے کے لیے تاکہ کہیں اس پر خاوند کی ملکیت زیادہ نہ ہو جائے, تو اس زیادتی کو دور کرنے کے لیے اسے اصل عقد کو ختم کرنے کی ملکیت حاصل ہوگی. آگے دیکھیے وَكَذَلِكَ الْمُكَاتَبَةُ, اور اسی طرح مکاتبہ بھی ہے جی. یعنی مکاتبہ کو اگر آقا نے آزاد کر دیا یا مکاتبہ نے پورا بدل کتابت ادا کر دیا وہ آزاد ہوئی جی. تو آزاد ہوتے ہی اس کو خیار عتق مل جائے گا, لہذا وہ بھی کیا کر سکتی ہے اپنے نکاح کو فسخ کر سکتی ہے. وَكَذَلِكَ الْمُكَاتَبَةُ, اور اسی طرح مکاتبہ بھی ہے یعنی اذا تزوجت باذن مولاها ثم عتقت, یعنی جب مکاتبہ نے اپنے آقا کی اجازت سے نکاح کیا ثم عتقت پھر وہ آزاد ہو گئی. اس کو عتقت پڑھنا بھائی, عتقت نہ پڑھنا, عتق یعتق کا معنی ہے آزاد ہونا اور اعتق یعتق کا معنی ہے دوسرے کو آزاد کرنا. تو کہتے ہیں ثم عتقت, پھر یہ آزاد ہو گئی, اس نے آقا کی اجازت سے نکاح کیا اور پھر آزاد ہو گئی, تو اس کو بھی اختیار ہوگا. وقال زفر رحمہ اللہ لا خیار لہا, امام زفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مکاتبہ کو کوئی اختیار نہیں ہوگا, لأن العقد نفذ علیہا برضاها, اس لیے کیونکہ یہ عقد نکاح اس پر نافذ ہوا ہے اس کی رضامندی سے. وکان المہر لہا, اور مہر بھی اس کے لیے ہی تھا. فلا معنى لإثبات الخيار, تو کوئی علت نہیں ہے اس کے لیے اختیار ثابت کرنے کی. فلا معنى, میں نے بتلایا بھائی معنى کا لفظ فقہ کی کتابوں میں علت اور سبب کے معنی میں عام استعمال ہوتا ہے, تو یہاں پر بھی یہ علت کے معنی میں ہے. فلا معنى لإثبات الخيار, لہذا کوئی علت نہیں ہے کہ اس مکاتبہ کے لیے اختیار ثابت کیا جائے. بھائی دیکھیے امام زفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مکاتبہ کو اختیار نہیں ملے گا یعنی خیار عتق نہیں ملے گا. گزشتہ اسباق میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ آقا جو ہے مکاتب اور مکاتبہ کا نکاح ان کی مرضی کے بغیر زبردستی نہیں کر سکتا. عام غلام اور باندی جو ہیں ان پر تو آقا کو ولایت اجبار حاصل ہے, لیکن مکاتب اور مکاتبہ جو ہیں وہ آزاد لوگوں کی طرح ہیں اور آزاد لوگوں کا تو کوئی جبرن نکاح نہیں کروا سکتا, تو ان کا بھی آقا جبرن نکاح نہیں کروا سکتا. تو امام زفر فرماتے ہیں کہ مکاتبہ کو خیار عتق نہیں ہوگا, اس لیے کیونکہ مکاتبہ کا جو نکاح ہوا تھا وہ اس کی مرضی سے ہوا تھا, اس کی رضامندی کے بغیر تو آقا نکاح ہی نہیں کروا سکتا, تو اس کی رضامندی سے نکاح ہوا تھا. اور نیز مکاتبہ کو جو مہر ملتا ہے وہ مکاتبہ ہی لیتی ہے, وہ آقا کو نہیں ملتا. وجہ یہ کہ مکاتبہ پیسوں کے لیے جدوجہد کر رہی ہے کہ کسی طرح مال ملے اور میں اپنے آپ کو آزاد کرواؤں, لہذا وہ آزاد عورتوں کی طرح ہو گئی ہے. اور یہ بھی یاد رکھنا مکاتبہ کے ساتھ آقا کے لیے صحبت بھی جائز نہیں ہوتی, مکاتبہ کے ساتھ آقا کے لیے صحبت بھی جائز نہیں ہے. معلوم ہوا آقا اب اس کے منافع کا مالک بھی نہ رہا اس کے اوپر, یعنی آقا کی ملکیت اب پورے طور پر نہیں ہے, آقا اس سے خدمت بھی نہیں لے سکتا, آقا اس کے ساتھ صحبت بھی نہیں کر سکتا. بھائی تو اب مکاتبہ کے اندر آقا کا حق ملک تو ہے, ملکیت تو ہے, لیکن پوری ملکیت نہیں ہے بھائی. تو امام زفر فرماتے ہیں کہ مکاتبہ کا نکاح اس کی مرضی سے ہوتا ہے اور نیز مہر بھی خود اس مکاتبہ ہی کو ملتا ہے, لہذا اب کوئی سبب اور علت نہیں ہے کہ اس کو خیار عتق دیا جائے. یہ نکاح اس پر آقا نے کوئی زبردستی نہیں کروایا تھا, بلکہ یہ اس نے اپنی مرضی سے آقا کی اجازت سے کیا تھا. تو کہتے ہیں وقال زفر رحمہ اللہ لا خیار لہا, اور امام زفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مکاتبہ کو کوئی اختیار نہیں ہوگا, لأن العقد نفذ علیہا برضاها, اس لیے کیونکہ یہ عقد نکاح اس مکاتبہ پر نافذ ہوا ہے, برضاها اس کی اپنی رضامندی سے. وکان المہر لہا, اور مہر بھی اس کے اپنے لیے ہی تھا. فلا معنی لإثبات الخیار, لہذا کوئی علت نہیں ہے کہ اس کے لیے خیار عتق کو ثابت کیا جائے. بخلاف الامتی, بخلاف باندی کے, لأنه لا يعتبر رضاها, اس کی رضامندی معتبر نہیں ہے. عام باندی کا نکاح تو بے شک آقا اس کی مرضی سے ہی کیوں نہ کروائے, لیکن اس کی رضامندی تو معتبر ہے ہی نہیں بھائی, उसका कोई एतबार नहीं, क्योंकि आका जबरन भी करवा सकता है। तो बेशक उसकी मर्जी से आका ने निकाह करवाया हो, लेकिन उसकी मर्जी का तो कोई एतबार ही नहीं है, वो ना भी राजी होती आका उसका निकाह करवा सकता था। भाई ये इमाम जुफर की दलील चल रही है, कहते हैं बिखिलाफ इल आमती, बखिलाफ आम बांदी के लिए अन्नहू ला युअतबर रिजाहा, क्योंकि उसकी तो रजामंदी मुअतबर नहीं, लिहाजा उसको खियार इत्क मिलेगा। वलना हमारी दलील यह है कि अन्नल इल्लत अज़दियादुल मिल्की, कि इल्लत जो है वो मिखावंद की मिल्कियत का बढ़ना है। वकद वजद ना हाफिल मुकातबती, और तहकीक इस इज़दियाद मिल्क को हमने मुकातबा में भी पाया है, यह इल्लत जो है मुकातबा में भी मौजूद है, क्योंकि मुकातबा की भी दो तलाकें होती हैं, और जब वो आजाद होगी तो उसकी तलाकें तीन हो जाएंगी, तो यहां भी इज़दियाद मिल्क आ रहा है, खामन की मिल्कियत बढ़ रही है, लिहाजा इसको भी खियार इत्क हासिल होगा। तो कहते हैं वलाना हमारी दलील यह है कि अन्नल इल्लत अज़दियादुल मिल्की, के खियार की जो इल्लत है वो मिल्कियत का बढ़ना है। वकद वजद ना हाफिल मुकातबती, और तहकीक यह इल्लत हमने मुकातबा में भी पाई है। लिअन्न इद्दतहा कुरआनी, इसलिए क्योंकि इसकी इद्दत जो है वो दो कुर हैं, यानी दो हैज हैं। व तलाकहा सिंतानी, और इसकी तलाकें जो हैं वो दो हैं। मालूम हुआ ये भी आम बांदियों की तरह है, जैसे आम बांदियों की इद्दत दो हैज होते हैं और उनकी दो तलाकें होती हैं, इसी तरह मुकातबा की इद्दत भी दो हैज हैं और इसकी तलाकें भी दो हैं, तो यहां पर भी इसके ऊपर मिल्कियत बढ़ेगी खावंद की, तो वो तीन तलाकों का मालिक बनेगा, लिहाजा इसको इख्तियार होगा। आगे देखिए, व इन तज़व्वजत अमतुन बिगैर इज़्नी मौलाहा सुम्मा अतक़त सहन निकाह। सूरत है मसला ये, एक बांदी ने आका की इजाजत के बगैर ही निकाह कर लिया, और आपने पढ़ा है कि गुलाम या बांदी निकाह कर लें आका की इजाजत के बगैर, तो वो निकाह आका की इजाजत पर मौकूफ रहता है, नाफिज नहीं होता। मुनाकिद तो हुआ है लेकिन मौकूफ होकर मुनाकिद हुआ है, अभी तक नाफिज नहीं। तो फिर ये बांदी जिसका निकाह अभी मौकूफ था, इसको आका ने आजाद कर दिया, और जब आजाद कर दिया तो याद रखो इसका निकाह आजाद करते ही नाफिज हो गया, अब इसको खियार इत्क नहीं मिलेगा। तवज्जो है, जिस बांदी का निकाह जो है पहले हुआ था, आका की रजामंदी से हुआ था, उसको तो खियार इत्क मिलेगा, लेकिन यह बांदी जिसने आका की इजाजत के बगैर निकाह किया है और फिर आका ने इजाजत देने से पहले इस बांदी को क्या कर दिया, आजाद कर दिया, तो अब इस बांदी को कोई खियार इत्क नहीं, इसका निकाह सही हो जाएगा। वजह यह कि देखो, बांदी ने निकाह कर लिया आका की इजाजत के बगैर, अब यह निकाह आका की इजाजत पर मौकूफ है, यह निकाह नाफिज नहीं हो रहा, मानेअ मौजूद है। क्या मानेअ है? आका की इजाजत अभी तक नहीं आई, और जब आका ने इसको आजाद कर दिया तो अब वो जो मानेअ था वो खत्म हो गया, क्योंकि पहले ये तो आका की ममलूका थी, अब तो ये आका की ममलूका न रही, तो वो जो मानेअ था निकाह के सिलसिले में वो मानेअ खत्म हुआ, आका का हक क्या हो गया, खत्म हो गया। और जब आका का हक खत्म हुआ तो अब इसका वो निकाह नाफिज हो गया, वो निकाह नाफिज। और ये निकाह कब नाफिज हुआ है, आजादी से पहले या आजादी के बाद? आजादी के बाद हुआ है। भाई आका का हक कब साकित होगा? आजाद होते ही। आजाद होते ही आका का हक क्या हो जाएगा? साकित। तो जिस लम्हे में आका ने आजाद किया उसी लम्हे के अंदर आका का हक साकित हुआ, और अगले ही लम्हे के अंदर वो निकाह नाफिज हो गया, क्योंकि मानेअ चला गया। तो लिहाजा ये जो निकाह नाफिज हुआ है ये आजादी की हालत में नाफिज हुआ है, और आजादी की हालत में जो निकाह होता है उसमें खावन कितनी तलाकों का मालिक है? तीन। तो गोया इसमें इब्तिदा से ही तीन तलाकों का खावंद मालिक है, लिहाजा यहां इज़्दियाद मिल्क की इल्लत ही नहीं पाई जा रही। ये निकाह नाफिज होते ही कितनी तलाकों के साथ नाफिज हुआ? तीन तलाकों के साथ ही नाफिज हुआ। ऐसा नहीं कि पहले दो थी और अब तीन हो रही है, नहीं, पहले तो यह नाफिज ही नहीं था। तो जैसे ही नाफिज हुआ आजादी के अंदर तीन तलाकों के साथ नाफिस हुआ, लिहाजा इस बांदी पर इज्तियादे मिल्क न पाया गया, लिहाजा बांदी को इख्तियार भी नहीं होगा और यह निकाह नाफिस हो जाएगा। तो कहते हैं वह इन तजा वजत अमतुन बगैर इज़्नी मौलाहा, और अगर बांदी ने निकाह कर लिया अपने आका की इजाजत के बगैर, सुम्मा अतकत, फिर यह आजाद हो गई, सह निकाह, तो वह निकाह सहीह हो गया, यानी अब इसको कोई इख्तियार नहीं। लिअन्नहा मिन अहलिल इबारती, इसलिए क्योंकि ये बांदी जो है वह अहले इबारत है, यानी आकिला बालिगा है, और इसकी इबारत से निकाह मुनाकिद हो सकता है। आकिल बालिग की इबारत से निकाह मुनाकिद हो सकता है भाई, शवाफे वगैरह के नजदीक तो औरत की इबारत से निकाह मुनाकिद ही नहीं होता, पढ़ चुके हैं। लेकिन हमारे यहां इंदल अहनाफ औरत की इबारत से भी निकाह मुनाकिद हो जाता है। तो ये बांदी आकिला है, बालिगा है और अहले इबारत है, तो इसकी इबारत से निकाह मुनाकिद हो सकता है। तो इसने निकाह किया था, वो निकाह मुनक्किद हुआ था, अलबत्त मौकूफ था, मानिया मौजूद था, और जैसे ही आका ने आजाद किया वो मानिया चला गया तो निकाह नाफिज हो गया। तो लिअन्नहा मिन अहलिल इबारती, इसलिए क्योंकि ये बांदी जो है अहले इबारत है, यानी इसकी इबारत से यानी इसके अल्फाज से निकाह मुनक्किद हो जाता है, क्योंकि आकिला है और बालिगा है भाई, यानी इसके अल्फाज का एतबार है भाई। तो कहते हैं लिअन्नहा मिन अहलिल इबारती, इसलिए क्योंकि ये बांदी जो है अहले इबारत है। वम्तिनाउन नुफूजी लिहक्किल मौला, नुफूज का माना नाफिज होना, और ये निकाह का नाफिज होना जो मुमतनिअ था लिहक्किल मौला, वो आका के हक की वजह से था। वकद जाला, और तहकीक आका का हक तो जायल हो गया, खत्म हो गया। बात समझ में आ गई, फिर तर्जमा देख लीजिए। कहते हैं वम तिनाउन नुफूज लि हक्किल मौला, और इस निकाह का नुफूज जो मुमतनिअ था लि हक्किल मौला, वो आका के हक की वजह से था। वकद जाला, और आका का हक तहकीक जायल हो गया, खत्म हो गया। वला खियार लहा, और इस बांदी को अब कोई इख्तियार नहीं होगा। लिअन्न नुफूज बाद अल इत्क, इसलिए क्योंकि इस निकाह का नाफिज होना आजादी के बाद हुआ है। फला ततहक्ककु ज़ियादतुल मिल्की, लिहाजा मिल्क की ज्यादती नहीं पाई गई। ये नाफिज ही आजादी के बाद हुआ है, तो नाफिज होते ही तीन तलाकें आ रही हैं। ऐसा तो नहीं कि पहले दो थी और फिर तीन हो गई, नहीं, जिस वक्त नाफिज हुआ उस वक्त तीन तलाकों के साथ ही यह नाफिज हुआ। तो कहते हैं लिअन्न नुफूज बाद अल इत्क, इसलिए क्योंकि इस निकाह का नाफिज होना आजादी के बाद है। फला ततहक्ककु ज़ियादतुल मिल्की, तो लिहाजा खावन की मिल्कियत का ज्यादा होना न पाया गया। कमा इजा ज़व्वजत नफ्सहा बाद अल इत्क, ये इसी तरह हो गया जैसे ये अपना निकाह करवाए आजादी के बाद, जैसे आजादी के बाद ये अपना निकाह करवाती है, इसको इख्तियार नहीं होता, तो इस निकाह में भी इसको इख्तियार नहीं होगा क्योंकि आजादी के बाद नाफिज हुआ है। आगे देखिए, फइन कानत तज़व्वजत बिगैर इज़्निही अला अल्फिन व महरुम मिस्लिहा मिअतुन फदखल बिहा ज़ौजुहा सुम्म आतकहा मौलाहा फलमहरु लिल मौला। सूरत मसला ये, एक बांदी ने आका की इजाजत के बगैर निकाह कर लिया और फिर खावंद ने इसके साथ सोहबत भी कर ली, उसके बाद आका ने इसको आजाद कर दिया। एक सूरत यह, और दूसरी सूरत यह है कि एक बांदी ने आका की इजाजत के बगैर निकाह कर लिया और खावंद ने अभी सोहबत नहीं की थी कि आका ने उसको आजाद कर दिया और फिर उसके बाद खावंद ने उसके साथ सोहबत कर ली। तवज्जो है, दोनों सूरतों में निकाह बगैर इजाजत के किया है बांदी ने और आका ने उसको आजाद किया है दोनों सूरतों में, लेकिन एक सूरत में खावंद ने आजाद करने से पहले उसे सोहबत कर ली थी और एक सूरत में आजाद करने के बाद खावंद ने उसके साथ सोहबत की है। तो याद रखो, अगर खावंद ने बांदी के आजाद होने से पहले उसके साथ सोहबत की है तो उस वक्त बांदी के मनाफे का मालिक आका था, लिहाजा अब वो जो महर होगा वो आका को मिलेगा, वो आका का हक है। और अगर खावंद ने आजादी के बाद सोहबत की है बांदी के साथ, तो आजादी के बाद जो औरत के मनाफे हैं उनकी मालिक वो खुद है, वो आका नहीं, लिहाजा इस सूरत में महर की हकदार ये औरत ही होगी। और नीज ये भी याद रखना, ये भी आपको बतलाएंगे कि बांदी ने चाहे ये निकाह महरे मिसल पर किया हो चाहे महरे मिसल से जायद पर किया हो, तो अगर आजादी से पहले खावंद ने सोहबत की है तो वो सारा महर जो है वो आका ही को मिलेगा, वो आका को मिलेगा। देखिए भाई कहते हैं फइन कानत तज़व्वजत बिगैरी इज़्निही अला अल्फिन, और अगर बांदी ने निकाह कर लिया आका की इजाजत के बगैर ही 1000 दिरहम पर, व महरु मिसलिहा मिअतुन, और इस जैसी बांदी का महरे मिसल तो 100 दिरहम होते हैं। देखो महरे मिसल से जायद पर निकाह किया है। फदखल बिहा ज़ौजुहा, फिर इस बांदी के साथ इसके खावन ने सोहबत कर ली, सुम्मा आतकहा मौलाहा, फिर इस बांदी को आजाद कर दिया इसके आका ने, सोहबत के बाद आजाद किया है। फल महरुलिल मौला, तो वो महर जो है आका के लिए होगा। लिअन्नहुस्तौफा मनाफिअ ममलूकतन लिल मौला, इसलिए क्योंकि खावन ने वसूल किए हैं, इस्तौफा या अस्तौफी का माना वसूल करना, लिअन्नहुस्तौफा इसलिए क्योंकि खावन ने वसूल किए हैं, मनाफिअ ऐसे मनाफिअ ममलूकतन लिल मौला जो आका के ममलूक थे। तो आका के ममलूक मनाफे वसूल किए हैं, लिहाजा महर किसको देगा, अब आका को देगा। वह इल्लम यदखुल बिहा, और अगर खावन ने निकाह के बाद अभी सोहबत नहीं की थी, हत्ता आतकहा यहां तक कि आका ने बांदी को आजाद कर दिया, फल महरु लहा, तो फिर इस सूरत में महर इस औरत इस बांदी के लिए होगा क्योंकि आजादी के बाद खावन ने सोहबत की है और अब तो आका इसके मनाफिया का मालिक नहीं। लिअन्नहुस्तौफा मनाफिअ ममलूकतन लहा, इसलिए क्योंकि इस सूरत में खावन ने ऐसे मनाफिअ वसूल किए हैं, ममलूकतन लहा जो खुद इस औरत के ही ममलूक थे। वल मुरादु बिल महरिल अल्फुल मुसम्मा, और महर से मुराद वो 1000 है, अल मुसम्मा जिसको मुकर्रर किया गया था। भाई मतन में आया ना, पहली सूरत में आया फल महरु लिल मौला और दूसरी सूरत में आया फल महरु लहा, तो इस महर से क्या मुराद है। दरअसल जहन में यहां शुबा आता है, शुबा यह कि इस जैसी औरत का महर तो मसलन 100 दिरहम होता है और औरत ने महर कितना मुकरर किया इस बांदी ने निकाह के वक्त, 1000 दिरहम, तो जहन में शुबा आता है कि यह जो महर है यह सारा आका को नहीं मिलना चाहिए क्योंकि आका का हक इसमें सिर्फ 100 दिरहम बनता है, क्योंकि इस जैसी बांदी का महरे मिसल कितना होता है, 100 दिरहम। मालूम है इस बांदी के मनाफिया की कीमत 100 दिरहम है और खावंद ने आका के मनाफिया वसूल कर लिए, तो खावंद पर वही कीमत आनी चाहिए जो इन मनाफिया की थी और वो तो मसलन 100 दिरहम थी, तो आका को 100 दिरहम मिलने चाहिए और बाकी 900 दिरहम बांदी के होने चाहिए। तो ये जहन में शुबा आता है, तो उसका जवाब दे रहे हैं साहिब हिदाया कि जो मतन में आया ना फल महरुलिल मौला, यह दूसरी बात, दोनों जगह महर से पूरा महर मुराद है, यानी आका को भी पूरा का पूरा 1000 दिरहम ही देना पड़ेगा, सिर्फ महरे मिसल उसका हक नहीं है बल्कि सारा मुसम्मा आका का हक है। अब उसकी वजह क्या है वो आगे बयान करेंगे। तो कहते हैं वल मुरादु बिल महरि अल्फुल मुसम्मा, और महर से मुराद जो है वो 1000 मुसम्मा है, वो जो मुकर्ररा है। लिअन्ना नफाज अल अक्द बिल इत्की, इसलिए क्योंकि अकद का नाफिज होना बिल इत्की आजादी की वजह से। इस तनदा इला वक्ति वजूद अल अक्द, इस तनदा का माना है मनसूब होना। भाई देखो यहां इस मसले के अंदर बांदी ने आका की इजाजत के बगैर निकाह किया था, तो अब आजादी के बाद वो निकाह नाफिज हो रहा है, लेकिन लेकिन इसकी निस्बत उसी वक्त की तरफ की जाएगी जब अकद हुआ था, यानी उस वक्त से ही इसको नाफिज शुमार किया जाएगा। नाफिज तो इस वक्त हो रहा है लेकिन निस्बत उस वक्त की तरफ की जाएगी जब अकद किया था, तो उस वक्त से ही इसको नाफिज शुमार किया जाएगा। तो कहते हैं लिअन्ना नफाज अल अक्द बिल इत्की, इसलिए क्योंकि अकद का नाफिज होना आजादी की वजह से। इस तनद इला वक्ति वजूद अल अक्द, ये मनसूब होगा जिस वक्त अकद का वजूद पाया गया, इसकी निस्बत उसी वक्त की तरफ की जाएगी जिस वक्त आकद पाया गया था, जिस वक्त आकद हुआ था, कि यानी कि उसी वक्त से नाफिज शुमार होगा। नाफिज तो अभी हुआ है, लेकिन यह नहीं कहेंगे कि गोया आकद ही अभी से हुआ है, नहीं नहीं, उस वक्त की तरफ निस्बत की जाएगी कि उस वक्त से ही गोया नाफिज है भाई, क्योंकि आकद तो वही हुआ था, इस वक्त तो कोई आकद नहीं हुआ, तो नाफिज मानना पड़ेगा, तो उसी आकद को नाफिज मानना पड़ेगा, इस वक्त आजादी के बाद तो कोई नया आकद नहीं हुआ भाई। तो यह माना है लिअन्ना नफाज अल अक्द बाद अल इत्की, इसलिए क्योंकि आजादी के बाद अकद का नाफिज होना इस तनादा यह मनसूब होगा इला वक्त वजूद अल अक्द, जिस वक्त अकद पाया गया फसहति तस्मियतु, तो लिहाजा वो तस्मिया भी सही हो जाएगा, वो जो अकद में महर मुकरर किया था 1000 दिरहम वो तस्मिया भाई आकद नाफिज अभी हुआ है, लेकिन निस्बत किसकी तरफ करेंगे, वो जो माजी में जिस वक्त आकद हुआ था, और जब वो आकद सही हुआ तो उसका वो तस्मिया भी सही जो उसमें महर मुकरर किया था, और जब तस्मिया सही हो गया तो खावंद के जिम्मे मुसम्मा वाजिब हुआ, और जब ये मुसम्मा वाजिब हुआ तो मालूम हुआ इस आकद में यही मुसम्मा आया है भाई, और ये मुसम्मा अगर खावंद ने आजादी से पहले सोहबत कर ली तो सारा मुसम्मा किसका हक होगा, आका का, और अगर आजादी के बाद सोहबत की खावंद ने तो फिर सारा मुसम्मा किसका हक होगा, बीवी का। तवज्जो है भाई, देखिए ना यहां फिर वही इश्काल जो मैंने जिक्र कर दिया कि जहन में ख्याल आता है कि बांदी के मनाफिया की कीमत तो 100 दिरहम थी, लिहाजा 1000 में से सिर्फ 100 आका को मिलना चाहिए, बाकी बांदी का हक होना चाहिए। तो जवाब दे रहे हैं कि नहीं भाई, यहां एक ही अकद हुआ है और उस अकद के अंदर एक ही मुसम्मा था और वही मुसम्मा इस निकाह की वजह से आया है, और यहां ये नहीं कि मुसम्मा अलग आ रहा है और महरे मिसल अलग, महरे मिसल तो आका को दे दिया जाए और मुसम्मा बांदी को दे दिया जाए, नहीं, यहां एक ही महर आ रहा है और वो वही मुसम्मा है, तो लिहाजा वो मुसम्मा अगर खावन ने आजादी से पहले सोहबत की है तो वो सारा मुसम्मा आका ही का हक होगा। बात समझ में आ गई। तो कहते हैं फसहती तस्मियतु, तो वो महर मुकरर करना सही हुआ, व वजबल मुसम्मा, और वही मुकररा महर वाजिब हो गया, व लिहाजा लम यजिबु महरुन आखरु बिल वक्त इफी निकाहिन मौकूफुन, और इसीलिए कोई और महर वाजिब नहीं हुआ वती करने से निकाह मौकूफ में। खामन ने तो आजादी से पहले ही सोहबत कर ली थी, तो उस सोहबत की वजह से कोई और महर नहीं वाजिब हुआ, बल्कि वो ही मुसम्मा वाजिब हुआ है, लिहाजा वो ही मुसम्मा किसका हक बनेगा, सारा आका का हक बनेगा। तो कहते हैं वलिहादा लम यजिबु महरुन आखरु बिल वक्त इफी निकाहिन मौकूफिन, और इसीलिए कोई और महर वाजिब नहीं हुआ था निकाह मौकूफ में वती करने की वजह से, लियान अल अक्द कद इत्तहद बिस्तिनादिन नफाजी, इसलिए क्योंकि आकद तो एक ही है बिस्तिनादिन नफाजी, नाफिज होने के मनसूब होने की वजह से, कि उसका नफाज क्या है, उसका नाफिज होना मनसूब हो रहा है माजी की तरफ। याद रखो यहां लफ्ज आया इत्तहदा, इत्तहदा यत्तहिदु, इत्तिहाद का यह भी माना है कि दो या ज्यादा चीजों में इत्तिहाद आ जाए, वो एक हो जाए, इसको भी इत्तिहाद कहते हैं, और नीज इत्तिहाद का माना अकेला होना, मुनफरिद होना, एक होना, यह भी इत्तिहाद का माना है। तो यहां ये इत्तहदा का माना एक होने के करेंगे जी। क्या कि ये जो आकद किया था इसमें एक ही महर आया या दो महर आए, एक ही महर आया, तो इत्तहद अल महरु, महर क्या है, एक ही है, क्योंकि आकद कितने हुए हैं, एक ही आकद हुआ है, अगरचे आजादी के बाद नाफिज हो रहा है यह निकाह, लेकिन इसकी निस्बत उसी माजी के आकद की तरफ होगी कि उस वक्त से ही क्या है ये नाफिज है भाई। तो जब एक ही आकद है और वही मुसम्मा है तो वही सारा किसका हक बन जाएगा, आजादी से पहले अगर खावन सोहबत कर लेगा तो सारा मुसम्मा किसका हक बन जाएगा, आका का हक बन जाएगा। यह माना है लिअन्न अल-अक्द कद इत्तहदा, इसलिए क्योंकि आकद जो है कद इत्तहदा वो एक है, वो एक है यानी वो अकेला है, बिस्तिनादिन नफाजी, इसके नाफिज होने के मनसूब होने की वजह से, यानी कि ये अलग नाफिज हुआ है और वो अलग था, नहीं, نافذ ہونا اسی ماضی کی طرف منصوب ہے. تو یہ معنی ہے. پھر ترجمہ دیکھ لیجئے, لِأَنَّ الْعَقْدَ قَدِ اتَّحَدَ بِاسْتِنَادِ النَّفَاذِ, اس لیے کیونکہ یہ عقد ایک ہی ہے نفاذ کے منصوب ہونے کی وجہ سے, کہ اس کا نفاذ اس ماضی کی طرف منصوب ہوگا کہ اس وقت سے ہی نافذ ہے. فلا یوجب الا مہرا واحدا, لہذا یہ عقد واجب نہیں کرتا مگر ایک ہی مہر, اور وہ سارا مہر پھر آقا کا حق ہوگا اگر آزادی سے پہلے خاوند نے صحبت کر لی. بات سمجھ میں آ گئی. آگے دیکھیے, ومن وطی امت ابنی فولدت منہ فہی ام ولد له وعلیہ قیمتها ولا مہر علیہ. صورت مسئلہ یہ ہے, ایک شخص نے اپنے بیٹے کی باندی کے ساتھ صحبت کر لی اور پھر اس باندی سے ایک بچہ پیدا ہوا, اور پھر باپ نے دعویٰ کر دیا کہ یہ میری اولاد ہے, تو یاد رکھو اس صورت کے اندر باپ کا دعویٰ صحیح ہو جائے گا, اس بچے کا نسب باپ سے ثابت ہو جائے گا, اور یہ باندی اس کی ام ولد بن جائے گی. لیکن یہ باندی تھی بیٹے کی اور اب باپ اس کا مالک بن گیا ہے, تو باپ کو قیمت دینا پڑے گی. بھائی باپ بیٹے کو اس باندی کی قیمت ادا کرے گا. تو کہتے ہیں ومن وطی امت ابنی ہی, اور جس شخص نے وطی کی اپنے بیٹے کی باندی سے, فولدت منہ, تو اس سے اس باندی نے ایک بچے کو جنم دیا, فہی ام ولد لہ, تو یہ باندی اس وطی کرنے والے کی یعنی باپ کی ام ولد ہوگی, وعلیہ قیمتہا, اور باپ پر اس باندی کی قیمت واجب ہوگی کہ وہ بیٹے کو ادا کرے, ولا مہر علیہ, اور باپ پر مہر نہیں ہوگا. باپ پر مہر نہیں ہوگا. بھئی وجہ یہ ہے, یہ آگے چل کر صاحب ہدایہ آپ کو بتلائیں گے کہ یہاں پر وطی سے پہلے ہی یہ باندی باپ کی مملوکہ ہو جائے گی. ویسے تو یہ باندی کس کی ہے؟ بیٹے کی, لیکن باپ جب وطی کرنے لگا تو وطی سے پہلے یہ باپ کی مملوکہ ہو جائے گی. تو یہ باندی باپ کی ملکیت ہو جائے گی. تو گویا باپ اپنی باندی کے ساتھ صحبت کر رہا ہے, اور اپنی باندی کے ساتھ جب انسان صحبت کرے اور اسے اولاد پیدا ہو جائے, اور پھر آقا جو ہے دعویٰ بھی کر دے کہ یہ میری اولاد ہے, تو وہ باندی اس کی ام ولد بن جاتی ہے. تو یہاں پر بھی یہ باندی اس باپ کی ام ولد بن جائے گی. تو یہاں پر صحبت سے پہلے اس باپ کو باندی کا مالک قرار دے دیں گے. تفصیل آگے صاحب ہدایہ بیان فرمائیں گے. تو جب اس نے باپ نے اپنی باندی کے ساتھ صحبت کی ہے اور اسے اولاد ہو اور انسان دعویٰ کرے, تو وہ اس کی ام ولد بن جاتی ہے. بھائی کسی اور کی باندی کے ساتھ کوئی صحبت کرے اور باندی سے بچہ پیدا ہو اور پھر وہ کہے یہ میرا بچہ ہے, نہیں بھائی یہ تو کسی اور کی باندی ہے, اس سے نسب ثابت نہیں ہو سکتا. بھائی بات سمجھ میں آ رہی ہے. لیکن یہاں کیا کہہ رہے ہیں, باپ سے نسب ثابت ہو جائے گا, اور باپ سے نسب تب ہی ثابت ہو سکتا ہے جب یہ باندی باپ کی مملوکہ ہو. بھائی اگر مملوکہ نہیں تو نسب کیسے ثابت ہو سکتا ہے؟ توجہ ہے. لہذا باپ اس کا مالک بن جائے گا اور بچہ جو ہے اس کا نسب باپ سے ثابت ہو جائے گا. تو باپ نے جب وطی کی ہے وہ اپنی باندی کے ساتھ وطی کی ہے, بیٹے کی باندی کے ساتھ وطی نہیں کی, کیونکہ وطی سے پہلے باپ مالک بن چکا تھا. اور جب اپنی باندی کے ساتھ باپ نے وطی کی ہے تو باپ پر مہر بھی واجب نہیں ہوگا, کیونکہ اپنی باندی سے جب صحبت انسان کرے تو اس پر مہر واجب نہیں ہوتا. تو باپ بیٹے کو مہر نہیں دے گا کیونکہ باپ نے اپنی باندی سے صحبت کی ہے. ہاں یہ باندی تھی بیٹے کی, تو بیٹے کا مال اس کے ہاتھ سے نکل گیا, باپ اس کا مالک بن گیا, تو اب باپ کو قیمت دینا پڑے گی. مسئلہ سمجھ میں آ گیا. دیکھیے بھائی کہتے ہیں, ومن وطی امت ابنی ہی, اور جس نے اپنے بیٹے کی باندی سے صحبت کی, فولدت منہ, تو باندی نے اس سے ایک بچے کو جنم دیا, فہی ام ولد لہ, تو یہ باندی اس شخص کی ام ولد ہو جائے گی, وعلیہ قیمتہا, اور اس شخص پر یعنی باپ پر اس کی قیمت واجب ہوگی, ولا مہر علیہ, اور اس باپ پر مہر نہیں ہوگا. وَمَعْنَى الْمَسْأَلَةِ أَنْ يَدَّعِيَهُ الْأَبُ, اور اس مسئلے کا معنی یہ ہے کہ باپ اس بچے کا دعویٰ بھی کرے. بھئی دیکھو یہ مسئلہ امام محمد رحمہ اللہ نے جامع صغیر میں ذکر فرمایا, और उन्होंने सिर्फ देखो मतन में इतना कहा, फवलदत मिन्हू, उस बांदी ने बच्चे को जन्म दिया उस आदमी से, फहिया उम्मु वलदिन लहू, तो ये बांदी उस बाप की उम्मे वलद बन जाएगी। हालांकि मैंने आपको बतलाया था कि बांदी से जो औलाद पैदा हो वो खुद ब खुद आका की शुमार नहीं होती, इल्ला ये कि आका इकरार कर ले या दावा कर दे कि ये मेरी औलाद है, फिर वो उसकी औलाद होगी और बांदी उसकी उम्मे वलद बन जाएगी। तो इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह ने मतन के अंदर बाप के दावे को जिक्र नहीं किया, बस इतना कहा कि वो उसकी उम्मे वलद हो जाएगी। तो साहिबे हिदाया फरमा रहे हैं वह मानल मसअलती, कि इस मसले का माना यह है कि अय्यद दायहुल अबू, के बाप भी उस बच्चे का दावा करे फिर ही उम्मे वलद बनेगी, वैसे नहीं। वह वजहू, और इसकी वजह यह है, अब तफसील बयान करने लगे हैं। भाई देखिए, इंसान हैरान रहता है फुकाहा की फकाहत पर कि जिंदगियां उन्होंने लगा दी मसाइल को, एक एक मसले को बाकायदा जाब्ते और कवानीन के तहत एक एक मसले को वो किस तरह बयान फरमाते हैं। कहते हैं वह वजहू, और वजह इसकी यह है कि अन्न लहू विलायत तमल्लू की मालिबनी ही, कि बाप जो है वो अपने बेटे के माल के मालिक बनने की विलायत रखता है। तमल्लुक का माना है मालिक बनना। याद रखो, फुकाहा फरमाते हैं बाप का माल अलग है, बेटे का माल अलग है। बेटा बाप के माल का मालिक नहीं और बाप बेटे के माल का मालिक नहीं, दोनों का माल अलग अलग है, लेकिन जरूरत और हाजत की सूरत में बाप बेटे का माल ले सकता है। मसलन बाप के पास माल वगैरह नहीं है, उसको जिंदगी बचाने के लिए खाने पीने और चीजों की जरूरत है, तो वो बेटे के माल को इस्तेमाल कर सकता है, यानी वो बेटे के माल का मालिक बन जाएगा। इस सूरत में वो इसको इस्तेमाल कर सकता है अपनी जरूरत के और अपनी हाजत के बकदर। तो बाप बेटे के माल का मालिक तो नहीं, लेकिन मालिक बनने की विलायत है, जरूरत और हाजत के वक्त वो मालिक बन जाएगा। वो खाने पीने की और चीजें बेटे के इस्तेमाल करता है, तो बाप के जिम्मे ये नहीं होगा कि वो इनकी कीमत और पैसे अदा करे, क्योंकि बाप इनका मालिक है। भाई तो हासिल कलाम क्या, बेटे और बाप का माल अलग अलग है, लेकिन बाप जरूरत और हाजत के मौके पर बेटे के माल का मालिक बन जाता है। क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आए थे अपने बेटे की शिकायत की कि अपना माल मुझसे बचा कर रखता है, तो हुजूर अलैहि सलाम ने उनके बेटे से फरमाया था अंता व मालुका ली अबी का, तू और तेरा माल तेरे बाप के हैं। तो फुकहा फरमाते हैं कि मालूम हुआ बाप बेटे के माल का मालिक बन सकता है, मालिक है नहीं, अलबत्ता मालिक बन सकता है। फर्क समझ में आ रहा है, इस वक्त मालिक नहीं है लेकिन हाजत में वो मालिक बन सकता है। भाई तो कहते हैं वजह इस मसले की ये है कि अन्न लहू विलायत तमल्लू की मालिबनी ही, कि बाप जो है उसको अपने बेटे के माल के मालिक बनने की विलायत हासिल होती है। लिल हाजति इलल बकाई, अपनी बका की हाजत की वजह से, क्योंकि बाप जो है वो अपनी जिंदगी की बका के लिए उस और हाजत और जरूरत में उसका माल इस्तेमाल कर सकता है। तो कहते हैं लिल हाजति इलल बकाई, यानी अपनी बका की हाजत के लिए, अपनी जान की हिफाजत के लिए। फलहू तमल्लुकु जारियती ही लिल हाजति इला सियानतिल माई, फलहू तमल्लुकु जारियती ही, तो बाप को बेटे की बांदी के मालिक होने की विलायत भी होगी। लिल हाजति इला सियानतिल माई, अपने मा की, अपने पानी की हिफाजत की हाजत की वजह से, कि उसको अपने पानी की हिफाजत की हाजत है। मा से मुराद है मनी, भाई मनी, जिससे हमल ठहरता है और औलाद होती है। तो बाप को अपने मा की हिफाजत की भी हाजत है, तो बाप जो है वो मोहताज है अपने मां की हिफाजत का, भाई, ताकि उसकी नस्ल बाकी रहे, जो आगे बच्चा पैदा हो उसका नसब साबित हो सके। तो बाप को अपने मां की हिफाजत की हाजत है भाई, और जैसे अपनी जान की हिफाजत की हाजत की वजह से वो बेटे के माल का मालिक बन सकता है, तो अपने मां की हिफाजत की हाजत की वजह से वो बेटे की बांदी का मालिक भी बन सकता है, ताकि उसके मां की हिफाजत हो सके, यानी जो औलाद पैदा हो उसका नसब बाप से साबित हो सके। बाप अपने मां की हिफाजत का मोहताज है ताकि उसकी नस्ल बाकी रह सके, इसलिए क्योंकि नस्ल कब बाकी रहेगी, जब नसब साबित होगा, और नसब तभी साबित होगा जब इस बांदी को बाप की बांदी करार दिया जाए। अगर इस बांदी को आप बाप की बांदी करार नहीं देते, अगर आप ये कहते हैं कि बाप इसका मालिक नहीं बना, तो इस सूरत के अंदर बाप ये जो वती कर रहा है ये वती भी हराम हुई, और इसकी वजह से जो औलाद आगे होगी वो भी वलदुल जिना शुमार होगी। तो इस तरह देखो वो बच्चा भी जाया हो जाएगा, उस बच्चे का नसब इस आदमी से साबित नहीं हो सकता भाई, तो वो बच्चा भी जाया होगा और बाप की नस्ल भी बाकी नहीं रहेगी। लेकिन इसके बजाय अगर क्या कर दिया जाए, इस बांदी को बाप की ममलूका करार दे दिया जाए, तो इस सूरत में बाप जो सोहबत करेगा वो सोहबत भी हराम ना रहेगी, क्योंकि वो अपनी बांदी से वती कर रहा है, और नीज बाप का मां अभी महफूज रहेगा, क्योंकि इसकी वजह से आगे जो औलाद पैदा होगी इसका नसब इस बाप से साबित हो जाएगा और वो इसके औलाद शुमार होगी, और इस तरह उसकी नस्ल बाकी रहेगी। भाई तवज्जो है, तो बाप अपने मां की सयानत का मोहताज है, लिहाजा इस बांदी को बाप की ममलूका करार दिया जाएगा सोहबत से पहले। जब बांदी बाप की ममलूका हुई तो बाप फेले हराम से भी बच गया और नीस उसकी नस्ल भी बाकी रही, उसकी नस्ल भी बाकी रही क्योंकि उस बच्चे का नसब बाप से साबित हो सकेगा। और अगर आप बाप को मालिक करार नहीं देते तो फिर इस सूरत में बाप का पानी महफूज न रहा, उससे आगे जो बच्चा पैदा हुआ उसका नसब अब बाप से साबित न हो सकेगा, जब नसब साबित न हो सकेगा तो उसकी नस्ल की बका न रहेगी, बच्चा भी जाया होगा और बाप भी फेले हराम का मुर्तकिब हो जाएगा। तो बाप सियानत मां का मोहताज हुआ, और जब बाप सियानत नफ्स का मोहताज होता था तो बेटे के माल का मालिक बन जाता था, तो जब सियानत मां का बाप मोहताज है तो वो बेटे की बांदी का मालिक बन जाएगा। दलील समझ में आ गई, अच्छी तरह तसल्ली हुई कि नहीं? इस मकाम पे तसल्ली नहीं होती असल में कि सियानत मां के लिए क्या माना। सियानत मां, सियानत मां का माना यह है कि आगे जो औलाद पैदा हो वो बाप ही की शुमार हो, नसब साबित हो सके, और अगर नसब साबित ना हो सका तो सियानत मां न रही, मां जाया हुआ, वो बच्चा जाया होगा। जिस बच्चे का नसब ही एक शख्स से साबित नहीं है तो उसका कौन ख्याल रखेगा भाई। बात समझ में आ गई। तो कहते हैं फिर देखिए, वबजूहू, इसकी वजह यह है कि अन्ना लहू विलायता तमल्लु की माल इबनी ही, कि बाप को अपने बेटे के माल का मालिक बनने की विलायत होती है, लिल हाजती इलल बकाई, अपनी बका की हाजत की वजह से, फलहू तमल्लु कुजारियती ही लिल हाजती इला सियानतिल माई, तो बाप को बेटे की बांदी के मालिक होने की विलायत भी होगी अपने मां की हिफाजत की हाजत की वजह से, गैर अन्नल हाजत इला इबका इनस्लिही दूनहा इला इबका इनफसिही। यहां एक इश्काल का जवाब दे रहे हैं। इश्काल ये कि अगर सियानत मां की हाजत भी सियानत नफ्स की हाजत की तरह है, सियानत मां की हाजत भी सियानत नफ्स की हाजत, जैसे बाप के पास खाने पीने के लिए नहीं है तो वो बेटे के माल का मालिक बन जाता है और वो उसको इस्तेमाल कर सकता है और बाप को कीमत नहीं देना पड़ती, लेकिन यहां बांदी के मामले में बाप को कीमत देना पड़ेगी भाई। तो कहते हैं अगर सियानत मां की हाजत सियानत नफ्स की हाजत की तरह है तो फिर बांदी के अंदर आप कीमत क्यों वाजिब करते हैं? सियानत नफ्स के मामले के अंदर तो आप कीमत वाजिब नहीं करते कि बाप जो कुछ बेटे के माल में से खा ले, पी ले, इस्तेमाल कर ले, उस पर कोई कीमत नहीं, लेकिन बांदी के अंदर आप कहते हैं बाप पर कीमत वाजिब होगी। तो उसका भी जवाब देने लगे हैं कि हाजत तो दोनों में है लेकिन जान बचाने की हाजत ज्यादा है, लिहाजा वहां पर माल वाजिब नहीं होगा, जबकि सियानत मां की हाजत वो कम दर्जे की है लिहाजा उसमें कीमत देना पड़ेगी। सियानत नफ्स की हाजत ज्यादा है लिहाजा वहां कीमत नहीं आएगी, और सियानत मां की हाजत कम दर्जे की है लिहाजा उसमें फिर कीमत देना पड़ेगी, बांदी की कीमत देगा। कहते हैं गैर अन हाजत इला इबका नस्ली ही, इलावा इसके कि अपनी नस्ल को बाकी रखने की जो हाजत है, अपनी नस्ल को बाकी रखना किस तरह होगा कि नसब साबित हो सके, बात समझ में आ गई, इसलिए क्योंकि अपनी नस्ल को बाकी रखने की जो हाजत है, दूनहा, हा जमीर हाजत को राजे है, दूनहा इला इबका इनफसिही, गैर अन हाजत इला इबका इनस्लिही, दूनहा इला इबका इनफसिही। भाई देखिए दूनहा, दूनहा के अंदर यह हा जमीर जो है यह हाजत को लौट रही है, तो इस हा जमीर की जगह हाजत का लफ्ज लगा दें फिर आपको इबारत बेहतरीन समझ में आएगी। गैर अन हाजत इला इबका इनस्लिही, इलावा इसके कि वो जो नस्ल को बाकी रखने की हाजत है, नस्ल को बाकी रखना कैसे होगा कि नसब साबित हो सके, और वो कब नसब साबित होगा जब बाप को मालिक करार दिया जाए, वरना तो वैसे नसब साबित नहीं हो सकता। तो कहते हैं गैर अन हाजत इला इबका इनस्ली ही, इलावा इसके कि अपनी नस्ल को बाकी रखने की जो हाजत है, दूनहा इला इबका इनफसी ही, ये दूनहा की हा जमीर की जगह अलहाजत का लफ्ज रखें, मैंने बताया आपको दून अल हाजत इला इबका इनफसी ही, ये हाजत उस हाजत से कम है जो अपने जात को बाकी रखने की है। एक हाजत है इबकाई नस्ली ही की, एक हाजत है अपनी नस्ल बाकी रखने की, और एक हाजत है अपनी जात बाकी रखने की कि मैं जिंदा रहूं, मैं बाकी रहूं। तो जाहिर सी बात है अपनी जात को बाकी रखने की जो हाजत है वो ज्यादा है, और अपनी नस्ल को बाकी रखने की हाजत उससे कम दर्जे की है। तो जो कम दर्जे की है उसमें कीमत देना पड़ेगी, और जो ऊंचे दर्जे की है उसमें कीमत नहीं आएगी। तो कहते हैं गैर अन हाजत इला इबका इनस्ली ही, इलावा इसके कि अपनी नस्ल को बाकी रखने की जो हाजत है, दूनहा इला इबका इनफसी ही, वो उस हाजत से कम है जो अपनी जात को बाकी रखने की है। फलिहादा यतमल्लकुल जारियत बिल कीमती, इसीलिए बाप जो है बांदी का मालिक बन जाएगा कीमत के साथ। व तआम बिगैरिल कीमती, और तआम का यानी खाने पीने का बिगैरिल कीमती, बगैर कीमत के। सुम हाजल मिल्कु यस्बुतु कबल अल इस्तिलादी शर्तन लहू, भाई वही बात भाई मैंने आपको बतलाया कि बाप जब बेटे की बांदी से सोहबत करने लगा तो वती से पहले बाप को उसका मालिक करार दिया जाएगा। वजह ये ताकि बाप के मां की हिफाजत हो सके, यानी पैदा होने वाले बच्चे का नसब बाप से साबित हो सके, और जब अपनी बांदी से कोई बच्चा पैदा हो तो उसका नसब साबित हो जाता है आका से, तो इस बांदी को भी किसकी ममलूका करार दे देंगे, बाप की ममलूका। जब बाप की ममलूका हो गई सोहबत से पहले, तो सोहबत के बाद जब बच्चा पैदा हुआ तो वो अपनी बांदी से पैदा हुआ, लिहाजा वो बांदी उसकी उम्मे वलद बन जाएगी, और अगर सोहबत के वक्त ममलूका नहीं तो फिर वो उस शख्स की उम्मे वलद भी नहीं बन सकती, और वह नसब भी साबित नहीं हो सकता, बात समझ में आ गई। तो कहते हैं सुम हाजल मिल्कु यस्बुतु कबल अल इस्तिलादी शर्तन लहू, इस्तिलाद का माना है उम्मे वलद बनाना, इस्तौलद यस्तौलिद, इस्तिलाद का क्या माना है उम्मे वलद बनाना। कहते हैं सुम हाजल मिल्कु, फिर ये जो बाप की मिल्कियत है उस बांदी के अंदर, यस्बुतु कबल अल इस्तिलादी, ये उम्मे वलद बनाने से पहले साबित होगी, शर्तन लहू उसके लिए शर्त होकर। भाई याद रखो कोई बांदी किसी की उम्मे वलद तभी बन सकती है कि जब वो उसकी ममलूका हो, तो बांदी का उसके लिए ममलूका होना शर्त है, फिर ही वो उम्मे वलद हो सकती है उस शख्स की। एक शख्स अगर एक बांदी का मालिक नहीं है तो ये बांदी इसकी उम्मे वलद भी नहीं हो सकती। तवज्जो है, तो मालूम हुआ उम्मे वलद होने के लिए मिल्कियत का होना शर्त है, और शर्त मशरूत पर मुकद्दम होती है, जैसे वुजू नमाज के लिए शर्त है तो वुजू नमाज पर मुकद्दम होता है, यहां पर भी इस्तिलाद के लिए यानी उम्मे वलद बनाने के लिए क्या शर्त है कि बांदी इसकी ममलूका हो, शर्त मुकद्दम होती है, इसलिए वती से मुकद्दम ही हमने भी बाप को इस बांदी का मालिक करार दे दिया। तो कहते हैं सुम्मा हाद अल मिल्कु यस्बुतु कबल अल इस्तीलादी, फिर ये जो बाप की मिल्कियत है ये उम्मे वलद बनाने से पहले साबित होगी शर्तन लहू, इस इस्तीलाद के लिए शर्त होकर। ईद इल मुसहिहु हकीकतुल मिल्की औ हक्कुहु, मुसहिह भाई सहह युसहिहु तसहीहन का माना है दुरुस्त करना, सही करना। तो यहां पर बाप अपने बेटे की बांदी से सोहबत कर रहा है और औलाद के पैदा होने के बाद बाप इस बच्चे का दावा करता है तो फुकहा इसको बाप की उम्मे वलद करार देते हैं, और इस बांदी का उम्मे वलद होना तभी सही हो सकता है जब पहले बाप के लिए मिल्कियत साबित की जाए। सोहबत से पहले ही बाप के लिए मिल्कियत साबित की जाए, तो ये मिल्कियत साबित करना बाप के लिए पहले से ही ये मुसहिह है, यानी तसही करने वाला है इस औरत के उम्मे वलद होने की। पहले मिल्कियत होगी तो इसका उम्मे वलद होना सहीह होगा, अगर पहले मिल्कियत नहीं तो फिर इसका उम्मे वलद होना भी सहीह नहीं भाई। तो ये माना है ईदिल मुसहिहु हकीकतुल मिल्की औ हक्कुहु, इसलिए क्योंकि वो चीज जो इस्तीलाद को सही करने वाली है हकीकतुल मिल्की, वो हकीकत मिल्क है, औ हक्कुहु या हक मिल्क है। ये जगह समझ लें भाई, हकीकत मिल्क का माना यह है कि एक शख्स एक बांदी का हकीकतन मालिक है, हकीकतन मालिक है। जब एक शख्स एक बांदी का हकीकतन मालिक है तो उसे सोहबत भी कर सकता है, जब सोहबत कर सकता है तो उसे औलाद पैदा हुई, तो यह बाद में कह सकता है यह मेरी औलाद है, तो यह बांदी इसकी उम्मे वलद हो सकती है। तो हकीकत मिल्क की सूरत में भी उम्मे वलद बन सकती है बांदी, और हक मिल्क की सूरत में भी बांदी उम्मे वलद बन सकती है। हक मिल्क का माना यह है कि बाज एतबार से मालिक हो, पूरे तौर पर एक चीज का मालिक नहीं लेकिन बाज एतबार से क्या है, मालिक है। तो ये देखो ये हकीकत मिल्क तो नहीं है, यानी हकीकतन पूरे का तो मालिक नहीं लेकिन हक मिल्क तो है, मिल्कियत का हक तो है, यानी बाज एतबार से तो मालिक है। जैसे देखो मुकातबा, मैंने अभी आपको बतलाया कि मुकातबा के साथ आका के लिए सोहबत जायज नहीं होती भाई, वो आजाद औरत की तरह हो गई है, वो जाएगी जाकर पैसे कमाएगी और लाकर आका के हवाले करेगी और अपने आप को आजाद करवाएगी। तो मुकातबा जो है वो आजाद लोगों के मुशाबे हो गई, आका के लिए उससे सोहबत करना जायज नहीं। लेकिन पता नहीं ये मुकातबा पैसे पूरे अदा कर सकेगी या नहीं कर सकेगी, अगर इसने खुद ही आजजी का इजहार कर दिया कि नहीं मुझसे इतने पैसे नहीं हो सकते तो इस सूरत में भी अक़्द किताबत खत्म हो जाएगा, या अगर ये कोशिश तो कर रही है लेकिन पैसे पूरे नहीं ला रही, किस्तें सही तरीके से अदा नहीं कर रही, तो आका काजी के पास जाकर इस अक़्द किताबत को खत्म करवा सकता है। तो ये बांदी फिर आम बांदियों की तरह बन जाएगी और आका के लिए फिर इसे सोहबत जायज हो जाएगी। तो मालूम हुआ मुकातबा आजाद औरतों जैसी हो गई है, आका उससे सोहबत नहीं कर सकता लेकिन उसमें आका का हक मिल्क तो है, बाज एतबार से अभी भी इस आका इसका मालिक है कि ये अगर आजीज आ गई या अक़्द किताबत को फसख करना पड़ा तो ये फिर पहले जैसी बांदी बन जाएगी। तो इसके अंदर आका की मिल्क हकीकतन तो नहीं है लेकिन हक मिल्क तो है, बाज एतबार से तो मिल्क है। तो इस मुकातबा के साथ अगर आका सोहबत कर लेता है, जायज तो नहीं था लेकिन इसने सोहबत कर ली और फिर उसे एक बच्चा पैदा हुआ और फिर आका ने कह दिया ये मेरा बच्चा है, याद रखो ये मुकातबा इसकी उम्मे वलद बन जाएगी, क्योंकि इस्तीलाद के लिए उम्मे वलद होने के लिए शर्त क्या है कि एक शख्स बांदी का या तो हकीकतन मालिक हो या उस बांदी में उसका हक मिल्कियत हो, या बांदी का हकीकतन मालिक हो या उस बांदी में उसका हक मिल्क हो। और मुकातबा के अंदर अगरचे हकीकत मिल्क तो नहीं है लेकिन हक मिल्क तो है, और हक मिल्क का क्या माना, बाज एतबार से मालिक हो। बात समझ में आ गई। फिर देखिए कहते हैं सुम महाद अल मिल को यस बुतु कबल अल इस्तीलादी, और फिर यह मिल्कियत बाप के लिए साबित हो जाएगी उम्मे वलद होने से पहले, शर्तन लहू, इसके लिए शर्त होकर, यानी उम्मे वलद होने के लिए शर्त है, पहले से क्या होना चाहिए, मालिक हो या हक मिल्क हो, तो यहां पर भी मिल्कियत साबित हो जाएगी शर्तन लहू, इस इस्तीलाद के लिए शर्त होकर, इजिल मुसहिहु हकीकतुल मिल्क औ हक्कुहु, इसलिए क्योंकि इस्तीलाद को सही करने वाली चीज जो है वो हकीकत मिल्क है, औ हक्कुहु या हक मिल्क है, وَكُلُّ ذَلِكَ غَيْرُ ثَابِتٍ لِلْأَبِي فِيهَا, और इन दोनों में से कोई भी चीज साबित नहीं है बाप के लिए इस बेटे की बांदी में। मैंने बताया बेटे का माल अलग होता है बाप का माल अलग, तो बेटे का जो माल है बेटे की जो बांदी है ना वो बाप की हकीकतन ममलूक है ना बाप का उसमें हक मिल्क है, बाज एतबार से भी बाप उसका मालिक नहीं है, तवज्जो है, तो बेटे की बांदी में ना हकीकत मिल्क है और ना हक मिल्क है, तो फिर इस्तीलाद तो हो ही नहीं सकता जब तक पहले से आप उसको सोहबत से पहले ममलूका ना करार दे दें। तो कहते हैं ईदिल मुसहिहु हकीकतुल मिल्क औ हक्कुहु, क्योंकि इस्तीलाद को सही करने वाली चीज जो है वो हकीकत मिल्क है औ हक्कुहु या हक मिल्क है, वकुल्लु जालिका गैरु साबितिन लिल अबी फीहा, और इनमें से हर एक वो गैर साबित है बाप के लिए फीहा इस बांदी में, यानी बाप को ना तो हकीकत मिल्क इस बांदी में हासिल है और ना हक मिल्क है, हत्ता यजूजु लहू तज़व्वुजु बिहा, याद रखिए यहां पर भी हत्ता नसब नहीं देगा, हत्ता के बाद यहां अन मुकद्दर नहीं होगा, तो यजूजु पर रफा पड़ेंगे। मैंने आपको बतलाया था कि हत्ता के नसब देने के लिए यानी हत्ता के बाद अन के मुकद्दर होने के लिए दो शर्तें हैं, एक शर्त यह है कि हत्ता का मा बाद वो मुस्तकबिल होना चाहिए हत्ता के माकबल की तरफ निस्बत करते हुए, और दूसरी शर्त यह है कि वो हत्ता सबबियत या गाया का फायदा दे रहा हो, हत्ता सबबियत का फायदा दे रहा हो यानी हत्ता का माकबल वो सबब हो और हत्ता का मा बाद उसका मुसबब हो, या हत्ता गाया का फायदा दे रहा हो यानी हत्ता का मा बाद जो है वो गाया बन रहा हो हत्ता के माकबल के लिए, तो फिर ही हत्ता के बाद अन मुकद्दर होता है। तो यहां ये शर्तें पूरी नहीं हैं भाई, यहां हत्ता का मा बाद माकबल की तरफ निस्बत करते हुए मुस्तकबिल ही नहीं है, तो यहां हत्ता नसब नहीं देगा। तो कहते हैं हत्ता यजूजु लहु तज़व्वुजु बिहा, यहां तक के बाप के लिए इसे निकाह भी जायज है, याद रखो मिलके निकाह और मिलके रकबी जमा नहीं हो सकते, मिलके निकाह और मिलके रकबी जमा नहीं हो सकते, एक शख्स जो है वो अपनी ममलूका बांदी से निकाह करना चाहता है, नहीं उसकी कोई सूरत नहीं है, या पहले पढ़ चुके हैं, इसलिए क्योंकि बांदी उसकी ममलूका है और जब यह शख्स इससे निकाह कर लेगा तो फिर बांदी मालिकन बन जाएगी, बांदी के कई हुकूक आ जाएंगे खाबंद के ऊपर भाई, कई हुकूक की मालिक बन जाएगी, तो एक ही औरत ममलूका भी हो और मालिकन भी हो ऐसा नहीं हो सकता, ममलूक अलग होता है मालिक अलग होता है, तो मिलके निकाह और मिलके रकबी जमा नहीं हो सकते, या यूं कहो मिलके रकबी है आला, उसमें इंसान पूरी जात का मालिक होता है, और मिलके निकाह जो है वो है अदना, क्योंकि उसमें सिर्फ इंसान मनाफिया का मालिक होता है, तो मिलके रकबी क्या हुई आला और मिलके निकाह क्या हुई अदना, लिहाजा आला मिलके होते हुए अदना मिल्क नहीं आ सकती, मिलके रकबी के होते हुए मिलके निकाह नहीं आ सकती, तो वो औरत वो बांदी जिसका आका हकीकतन मालिक हो या उसमें हक मिल्क हो उसके साथ उसका निकाह जायज नहीं, लिहाजा आका अपनी बांदी के साथ भी निकाह नहीं कर सकता क्योंकि यहां हकीकत मिल्क है, और नीज आका अपनी मुकातबा के साथ भी निकाह नहीं कर सकता क्योंकि वहां हक मिल्क है, लेकिन बेटे की बांदी के साथ तो बाप का निकाह जायज है। मालूम हुआ न वहां हकीकत मिल्क है और ना हक मिल्क है। अगर वहां हकीकत मिल्क होती या हक मिल्क होता तो फिर वहां निकाह जायज न होता भाई। तो कहते हैं वकुल्लु जालिका गैरु साबितिन लिल अबी फीहा, और इन दोनों में से हर एक वो साबित नहीं है बाप के लिए फीहा इस बांदी में, हत्ता यजूजु लहु तज़व्वुजु बिहा, यहां तक के बाप के लिए जायज है इस बांदी के साथ निकाह करना। फला बुद्द मिन तकदीमी ही, लिहाजा जरूरी है मिल्कियत को मुकदम करना। भाई कोई उम्मे वलद कब बनती है? जब उसमें हकीकत मिल्क हो या हक मिल्क हो। और बेटे की बांदी में ना तो हकीकत मिल्क है और ना हक मिल्क है, लिहाजा ये उम्मे वलद हो ही नहीं सकती बाप के लिए जब तक आप सोहबत से पहले मिल्कियत को ना माने। ये माना है फला बुद्द मिन तकदीमी ही, लिहाजा इस बाप की मिल्कियत को मुकदम करना जरूरी है वती पर। फतबैना अन्नल वक्त अयुलाकी मिल्कहू, तो यह बात जाहिर हो गई कि इस वती ने मुलाकात की है अपनी मिल्कियत से। वती से पहले ही बाप इसका मालिक बन गया तो बाप अपनी मिल्कियत के अंदर वती कर रहा है। ये वो फ़िअले हराम नहीं कर रहा, जिना नहीं कर रहा, अपनी बांदी से सोहबत कर रहा है भाई। फला यल्ज़मुहुल उक्रु, लिहाजा बाप पर महर भी लाजिम नहीं होगा। उक्र ये भी महर को कहते हैं। उक्र किसे कहते हैं? महर को कहते हैं। तो बाप अपनी बांदी से निकाह कर रहा है, जब अपनी बांदी से निकाह कर रहा है तो अपनी बांदी में तो महर नहीं आता भाई। तो ये माना है फला यल्ज़मुहुल उक्रु, लिहाजा बाप पर महर लाजिम नहीं होगा। भाई ये महर को उक्र कहते हैं, ये उस वक्त जब वहां निकाह न हुआ हो, वती भी शुबा कर ली जाए, वती भी शुबे की वजह से कोई किसी से वती कर लेता है, तो फिर इस सूरत में याद रखो जो महर आता है उसको उक्र कहते हैं। क्योंकि महर तो निकाह में आएगा, चाहे निकाह सही हो चाहे निकाह फासिद, वहां महर का लफ्ज बोलते हैं, महर बोलते हैं या सदाक का लफ्ज बोलते हैं। लेकिन अगर वती भी शुबा कर ली, मसलन एक शख्स का एक निकाह हुआ और वो बीवी के पास आया, औरतों ने यूं किया, उसकी बीवी की जगह एक किसी और औरत को बिठा दिया कि देखें ये अपनी बीवी को पहचानता है या नहीं पहचानता, लेकिन ये शख्स आया इसने आते ही उसके साथ सोहबत कर ली, तो अब याद रखो ये वती भी शुबा है। और यहां पर इस औरत का महर मिसल अब इस आदमी को देना पड़ेगा, लेकिन इसको महर नहीं कहेंगे क्योंकि यहां इन दोनों में तो कोई निकाह ही नहीं, निकाह हो तो महर कहते हैं। तो ये जो शुबे की वजह से जो वती कर ली जाए उसमें जो माल आता है उसको ओकर कहते हैं। और तो ये आजाद औरत में उसका महर मिसल होता है, और बांदी के अंदर उलमा फरमाते हैं कि अगर बाकेरा बांदी हो तो वहां पर उसका उशर देना पड़ता है बांदी की कीमत का। मसलन बांदी 2 लाख की है तो उसका उशर 20,000 बनता है, तो ये 20,000 देना पड़ेगा भाई, उसकी कीमत का 1/10। और अगर बांदी सय्यबा है और उसके साथ वती भी शुबा कर ली तो फिर इस सूरत के अंदर निस्फ उशर देना पड़ता है, यानी 20वां हिस्सा। यानी अगर बांदी 2 लाख की है तो फिर 10,000 बतौर महर के देने पड़ेंगे, और इसको ओकर कहेंगे। महर भी कह देते हैं लेकिन वैसे ये ओकर कहलाता है भाई। तो ये बाज उलामा फरमाते हैं कि बाकेरा बांदी में उशर और सय्यबा में निस्फ उशर, लेकिन मुहशी हजरात फरमाते हैं कि मुख्तार ये है, पसंदीदा ये है कि उस बांदी में गौर किया जाएगा कि इस जैसी बांदी का निकाह इसका आका उमूमन कितने में करवाते हैं। इस जैसी हुस्न व जमाल वाली बांदी हो तो उसका निकाह आका कितने महर में करवाता है, तो वो उकर के तौर पर आएगा अगर बांदी के साथ शुबे में वती कर ली। बात समझ में आ गई? तो कहते हैं फतबैना अन्नल वक्त अयुलाकी मिल्कहू, तो ये बात जाहिर हो गई कि वती ने अपनी मिल्कियत से मुलाकात की है। फला यल्ज़मुहुल उक्रु, लिहाजा इस बाप पर उकर यानी महर लाजिम नहीं होगा। وقال زفر والشافعی رحمهم اللہ تعالی یجب المہر. امام زفر اور امام شافعی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ مہر واجب ہوگا, لئنہما یثبتان الملک حکما للاستیلادی, لئنہما یثبتان الملک, اس لیے کیونکہ یہ دونوں ملکیت کو ثابت کرتے ہیں, حکما للاستیلادی, استیلاد کے لیے بطور حکم کے, استیلاد کے لیے بطور حکم. بھئی دیکھو ملکیت وہ بھی ثابت کرتے ہیں امام شافعی رحم اللہ اور امام زفر رحم اللہ, اور ملکیت ہم بھی ثابت کرتے ہیں, لیکن ہمارے نزدیک یہ ملکیت استیلاد کے لیے شرط ہے, لہذا اس کا وتی پر مقدم ہونا ضروری ہے, کیونکہ شرط شے شے پر مقدم ہوتی ہے. جبکہ وہ ملکیت کو استیلاد کا حکم قرار دیتے ہیں کہ ملکیت استیلاد کا حکم ہے, یعنی استیلاد سے ملکیت آئے گی بھائی, کیونکہ آپ جانتے ہیں حکم شے شے کے بعد آتا ہے, حکم شے ایک مرد اور عورت آپس میں نکاح کریں گے تو نکاح کے بعد یہ میاں بیوی بنیں گے, نکاح کا حکم یہ ہے کہ یہ دونوں اب آپس میں کیا بن گئے, میاں بیوی, تو حکم شے اس شے کے بعد آتا ہے, تو عقد کے بعد یہ آپس میں میاں بیوی بنیں گے, عقد سے پہلے نہیں. اسی طرح بائع اور مشتری بیع کرتے ہیں, تو بیع کرتے ہی مشتری مبیعے کا مالک بن گیا, تو یہ بیع کا حکم ہے, تو یہ مشتری مالک کا بنے گا, بیع کے بعد, کیونکہ حکم شے شے کے بعد ہوتا ہے, بیع سے پہلے وہ مالک نہیں. یا اسی طرح ہے جیسے ہر فاعل مرفوع ہوتا ہے, تو فاعل کوئی لفظ پہلے فاعل بنے تو صحیح پھر وہ مرفوع ہوگا, تو فاعل بننا پہلے ہوگا اور رفع اس کے بعد ہوگا, کیونکہ یہ فاعل کا حکم ہے بھائی, تو حکم شے شے کے بعد ہوا کرتی ہے. تو ہمارے نزدیک استیلاد کے لیے ملکیت شرط ہے, اور شرط شے شے پر مقدم ہوتی ہے, لہذا اس ملکیت کا استیلاد پر مقدم ہونا ضروری ہے, یعنی اس وتی اور اس صحبت پر مقدم ہونا ضروری, اور ان کے نزدیک یہ جو ملکیت ہے یہ استیلاد کا حکم ہے, اور حکم شے شے کے بعد ہوتا ہے, لہذا یہ اس کے بعد جو ہے وہ ملکیت کو ثابت کرتے ہیں. جب اس کے بعد ثابت ہو رہی ہے ملکیت, تو معلوم ہوا پھر اس صورت میں باپ نے جو صحبت کی ہے وہ اپنے ملک میں کی یا غیر ملک میں, ان کے نزدیک غیر ملک میں وتی کی ہے, اور غیر ملک میں یہ تو بیٹے کے منافع تھے جو باپ نے وصول کر لیے, لہذا باپ کو مہر دینا پڑے گا بھائی, باپ کو مہر بھی پورا دینا پڑے گا. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو کہتے ہیں وقال زفر و شافعی رحمهم اللہ تعالی, اور امام زفر اور امام شافعی رحم اللہ فرماتے ہیں یجب المہر, کے مہر واجب ہوگا, لئنہما یثبتان الملک حکم للاستیلاد, اس لیے کیونکہ یہ دونوں ملکیت کو ثابت کرتے ہیں استیلاد کے لیے بطور حکم کے, کما فی الجاریت المشترکتی, جیسے کہ مشترکہ باندی میں, جیسے مشترکہ باندی میں. مثلا دیکھو بھائی, ایک باپ اور بیٹے نے مل کر ایک باندی خرید لی, کچھ پیسے باپ نے ملائے کچھ پیسے بیٹے نے ملائے. اب دیکھو یہ مشترکہ باندی ہے, اور آپ جانتے ہیں مشترکہ باندی کے ساتھ کسی ایک مالک کے لیے بھی صحبت جائز نہیں. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو نہ باپ کے لیے اسے صحبت جائز ہے اور نہ بیٹے کے لیے صحبت جائز ہے, لیکن باپ کا حق ملک اس میں ہے, اسی طرح بیٹے کا بھی اس میں حق ملک ہے. اب یاد رکھو عند الاحناف, اگر اس باپ نے اس باندی سے صحبت کر لی تو پھر اس صورت میں باپ کو نصف مہر دینا پڑے گا, اور نیز نسب بھی ثابت ہو جائے گا. باپ اگر بعد میں دعویٰ کرتا ہے یہ میری اولاد ہے تو نسب بھی ثابت ہو جائے گا. تو امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں دیکھا, جب باپ نصف کا مالک تھا تو وہاں آپ بھی مانتے تھے نصف اوقر آئے گا. کیا آئے گا؟ نصف. بھائی دیکھو نا, اس صورت میں میں نے بتایا نصف اوقر آئے گا, کیونکہ باندی باپ اور بیٹے کی دونوں کی ہے, تو نصف کا تو باپ کا حق ہے ہی, نصف باپ کا حق نہیں ہے, لہذا وہاں نصف اوقر آئے گا. تو امام شافعی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو, جب نصف باندی میں بیٹے کی ملکیت ہو تو باپ پر نصف اوقر آتا ہے, تو جب پوری باندی کے اندر ہی بیٹے کی ملکیت ہوگی تو باپ پر पूरा उकर आएगा। तवज्जो है, जब मुश्तरका बांदी के अंदर निसफ मिल्कियत बेटे की है तो वहां पर बाप पर निसफ उकर आता है, तो जब पूरी बांदी के अंदर ही बेटे की मिल्कियत हो तो इस सूरत में बाप पर पूरा उकर आएगा। तो इमाम शाफी रहमतुल्लाह यहां उकर भी वाजिब करते हैं और फिर बाप मालिक भी बन जाएगा तो बाप पर उसकी कीमत भी आएगी, जबकि हमारे नजदीक सिर्फ कीमत आएगी क्योंकि मिल्कियत सोहबत से पहले साबित हो गई। तो जब सोहबत की उस वक्त अपनी बांदी से सोहबत की है लिहाजा उकर नहीं देना पड़ेगा, अलबत्ता कीमत देना पड़ेगी भाई। तो इमाम शाफी रहमतुल्लाह इसको मुश्तरका बांदी पर कियास करते हैं कि मुश्तरका बांदी में जब निस्व उकर आता है तो इस बेटे की ममलुका बांदी में पूरा उकर देना पड़ेगा। तो हम जवाब देते हैं कि इस मुश्तरका बांदी में बाप के लिए पहले से ही मिल्कियत साबित है, मुश्तरका बांदी में पहले से ही बाप की मिल्कियत साबित है क्योंकि निसफ बांदी का मालिक तो बाप है भाई। और इस्तीलात के लिए भी क्या जरूरी था कि या मिल्कियत हो या हक मिल्कियत हो, तवज्जो है, मिल्कियत हो या हक मिल्कियत हो, तो जब मुश्तरका बांदी के अंदर बाप के लिए निस्व मिल्कियत पहले से ही साबित है तो यह उम्मे वलद बनाने के लिए काफी है भाई। इसकी वजह से इस बांदी से जो औलाद पैदा होगी उसका नसब बाप से साबित हो सकता है, तो बाप का इसको उम्मे वलद बनाना सही होगा भाई। देखो बांदी मुश्तरका है, इस बांदी के साथ ना बेटे के लिए सोहबत जायज ना बाप के लिए सोहबत जायज है, लेकिन अगर बाप इसके साथ सोहबत कर लेता है तो फिर इस सूरत में इस सोहबत के नाजायज होने के बावजूद फिर भी यह बांदी बाप की उम्मे वलद बन सकती है क्योंकि बाप की मिल्कियत तो इसके अंदर मौजूद है। जब मिल्कियत मौजूद है तो अब आगे बच्चे का नसब भी साबित हो सकता है जब बाप दावा कर देगा। तो जब मिल्कियत पहले से मौजूद है बाप की इस बांदी के अंदर तो अब अलैदा से कोई मिल्कियत साबित करने की जरूरत नहीं। वो बांदी जो बेटे की ममलूका थी उसमें तो वहां बाप के लिए ना हकीकत मिल्कियत थी और ना हक मिल्कियत था, लिहाजा इसलिए वहां मजबूरन हमें मिल्कियत को पहले साबित करना पड़ा, वरना उसके बगैर तो बाप उसको उम्मे वलद बना ही नहीं सकता, उसके बगैर तो उसका इस्तीलाद ही नहीं हो सकता। तो वहां पर मजबूरन हमें मिल्कियत को पहले साबित करना पड़ा और जब मिल्कियत पहले साबित हो गई तो बाप ने जो सोहबत की वो अपनी बांदी से सोहबत की, जब अपनी बांदी से सोहबत की तो वहां पर बाप पर उकर नहीं आएगा क्योंकि वो बेटे की बांदी से सोहबत नहीं कर रहा बल्कि अपनी बांदी से सोहबत कर रहा है। तो आप उस बांदी को इस मुश्तरका बांदी पर कयास नहीं कर सकते, इसलिए क्योंकि इस मुश्तरका बांदी के अंदर तो बाप की मिल्कियत पहले से ही मौजूद है। तो जब मिल्कियत पहले से मौजूद है तो बाप इसको उम्मे वलद बना सकता है, कोई अलग मिल्कियत पहले साबित करने की हाजत नहीं है क्योंकि बाप की मिल्कियत इसके अंदर मौजूद है और वो मिल्कियत काफी है उम्मे वलद बनाने के लिए। तो वहां हमने मिल्कियत को मुकद्दम क्यों किया था कि उसके बगैर इस्तीलाद सही नहीं था, यानी उम्मे वलद बनाना सही नहीं था, और यहां पर मिल्कियत मौजूद है तो इस्तीलाद सही है, लिहाजा अलग कोई और मिल्कियत साबित करने की जरूरत नहीं। तो और फिर मिल्कियत तो निसफ के अंदर है लिहाजा बाप को निसफ उकर देना पड़ेगा यहां पर, जबकि वहां पर पहले से जब मिल्कियत को साबित माना तो पूरी बांदी का बाप मालिक बन गया तो वहां बाप पर कोई उकर नहीं आएगा, वो अपनी बांदी के साथ सोहबत कर रहा है। बात समझ में आ गई, तो लिहाजा आप इस बेटे की ममलूका बांदी को मुश्तरका बांदी पर कयास नहीं कर सकते क्योंकि इस बेटे की ममलूका बांदी में मिल्कियत को मुकद्दम हम मानते हैं जबकि उस मुश्तरका के अंदर कोई मिल्कियत मुकद्दम मानने की जरूरत नहीं, वहां पहले से ही मिल्कियत मौजूद है और वो काफी है उम्मे वलद बनाने के लिए। बात समझ में आ गई, तो ये माना है कमाफिल जारियतिल मुश्तरकती, जैसे कि मुश्तरका बांदी में वह हुक्म शैई याकूबहू, और किसी चीज का हुक्म उसके पीछे आता है, आकबा याकूबू का माना है पीछे आना, बाद में आना। तो इमाम शाफी रहमतुल्लाह की दलील चल रही है, वो फरमाते हैं कि वह हुक्म शैई याकूबहू के किसी चीज का हुक्म उस चीज के बाद आता है, मिल्कियत भी इस्तीलात का हुक्म है तो इस्तीलात के बाद आएगा पहले नहीं। वल मसअलतु मारूफतुन, और ये मसला मारूफ है मशहूर है, साहिब हिदाया फरमाते हैं कि ये मसला मशहूर है भाई, यानी जामे सगीर की शुरुहात वगैरह में उलमा ये मसला जिक्र फरमाते हैं, उलमा में ये मसला मशहूर है कि हमारे नजदीक मिल्कियत जो है वो इस्तिलाक के लिए शर्त होकर पहले साबित होगी और उनके नजदीक मिल्कियत जो है इस्तिलाक के लिए हुक्म होकर बाद में साबित होगी। भाई बात समझ में आ गई। तो कहते हैं वल मसअला तो मारूफतुन, और ये मसला मारूफ है। आगे देखिए भाई, قال ولو كان الابن زوجها اباه فولدت لم تصر ام ولد له ولا قيمه عليه وعليه المهر ولدها حر। भाई दूसरी सूरत है मसला, बेटे ने अपनी बांदी का निकाह करवा दिया अपने बाप से, तो عند الاحناف ये निकाह जायज है, इसलिए क्योंकि बेटे का जो माल है वो अलग है, ना तो उसमें बाप के लिए हकीकत मिल्क है और ना हक मिल्क है, तो इसके साथ बाप का निकाह जायज है। और जब बाप का निकाह जायज है तो बाप सोहबत कर लेता है और औलाद पैदा होती है, तो इस सूरत में ये औलाद इसका नसब साबित होगा। नीज इस सूरत में बाप पर बांदी की कीमत नहीं आएगी, क्योंकि बांदी तो अभी भी बेटे ही की ममलूका है, तो बाप ने सिर्फ उससे निकाह किया है भाई। हां बाप को महर देना पड़ेगा, क्योंकि खावंद के जिम्मे महर होता है जो वो बांदी के आका को अदा करता है। और नीज ये जो बच्चा है ये आजाद होगा जी। ये बच्चा क्या होगा? आजाद। वजह ये कि ये बांदी बेटे की ममलूका है और ये जो बच्चा है ये इसका मालिक का भाई है भाई। और हदीस में आता है मन मलका ज़ा रहम महरम मिन्हु अतका अलैही, कि जो अपने करीबी महरम रिश्तेदार का मालिक बन जाए वो उस पर आजाद हो जाता है, करीबी रिश्तेदार भी हो और महरम भी हो। तवज्जो है, महरम क्या माना, यानी दोनों तरफ से निकाह जायज ना बनता हो। जैसे यहां ये दोनों भाई हैं तो इनमें से जरा एक को औरत फर्ज कर लें, तो इनका आपस में क्या रिश्ता हुआ, बहन भाई, तो बहन भाई के दरमियान तो निकाह की कोई सूरत नहीं है, ये महरम है भाई। फिर यूं करें, अब दूसरे को औरत फर्ज करें, पहले को उसी तरह मर्द रहने दें, तो अब भी बहन भाई वाला रिश्ता बनता है। तो देखा दोनों तरफ से हुरमत आ रही है, तो महरम भी हैं ये दोनों एक दूसरे के और करीबी रिश्तेदार भी हैं, भाई हैं भाई एक दूसरे के। तो इस सूरत में जो हदीस में आता है मन मलका ज़ा रहमी महरमी मिनहू, जो अपने करीबी महरम रिश्तेदार का मालिक बना अतका अलैहि, वो उस पर आजाद हो जाता है। आजाद करना नहीं पड़ता, जिस लम्हे में मालिक बनता है अगले लम्हे में वो खुद ब खुद आजाद हो जाता है। किसी का भाई मसलन गुलाम है, ये अपने भाई को खरीदता है कि मैं इसको खरीद कर आजाद करूं, याद रखो खरीदते ही उसका भाई आजाद हो जाएगा, इसको आजाद करना नहीं पड़ेगा भाई। तवज्जो है। तो यहां पर भी ये जो बच्चा पैदा हुआ ये अपने आका का भाई है, लिहाजा ये उसका करीबी महरम रिश्तेदार हुआ तो ये फौरन ही आजाद हो जाएगा। तो कहते हैं काला वलव कान अली मुजवजहा अबाहू, और अगर बेटे ने निकाह करवा दिया अपनी उस बांदी का अपने बाप से, फवलादा, तो फिर उस बांदी ने बच्चे को जन्म दिया, लम तसिर उम्मा वलदिल लहू, तो फिर ये बाप की उम्मे वलद नहीं बनेगी, ये बाप की उम्मे वलद नहीं बनेगी, क्योंकि बाप ने इसे निकाह किया है भाई। वला कीमत अलैही, और नीज बाप पर इसकी कीमत भी वाजिब नहीं होगी, क्योंकि बांदी तो अभी भी बेटे की है भाई। वह अलैहिल महरू, और बाप पर महर वाजिब होगा क्योंकि इसने निकाह किया है और निकाह में महर देना पड़ता है। वह वलदुहा हुर्रुन, और इस बांदी का बच्चा जो है वो आजाद है। लिअन्नहु सहत तज़व्वुजु इंदना, इसलिए क्योंकि ये निकाह हमारे नजदीक सहीह है। खिलाफन लि शाफिई रहमहुल्लाह, बखिलाफ इमाम शाफी रहमहुल्लाह के, इमाम शाफी रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि बाप का बेटे के माल में हक मिल्क है, बाप का बेटे के माल में हक मिल्क है, यानी बाज एतबार से बाप मालिक है उनका, इसलिए क्योंकि हुजूर ने क्या फरमाया, अंता व मालुक ली अबी का, तू और तेरा माल तेरे बाप के हैं, तो मालूम हुआ बाप भी बेटे के माल का मालिक है बाज एतबार से जी। तो यानी बाप का हक मिल्क है जी। बाप का हक मिल्क है। और आप जाब्ता पढ़ चुके हैं कि जहां हकीकत मिल्क हो या हक मिल्क हो वहां निकाह जायज नहीं, क्योंकि जब मिल्कियत हासिल है तो फिर वहां मिलकर निकाह नहीं आ सकती भाई। तो लिहाजा इमाम शाफी रहमतुल्लाह के नजदीक बाप के लिए बेटे के माल में हक मिल्क है, जबकि हमारे नजदीक बाप के लिए बेटे के माल में हक मिल्क नहीं है, हक तमल्लुक है। जरूरत और हाजत के मौका पर वो मालिक बन सकता है, इस वक्त मालिक नहीं। लेकिन वो फरमाते हैं बाप का बेटे के माल में हक मिल्क है, बाज एतबार से बाप मालिक है भाई। और जब बाज एतबार से बाप मालिक है बेटे के माल का, तो फिर बेटे की बांदी का बाप से निकाह जायज ही नहीं। तवज्जो है, क्योंकि निकाह उसी से हो सकता है जहां ना हकीकतन मिल्क हो और जहां ना हक मिल्क हो भाई। तो चुनाचे इसीलिए इमाम शाफी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि बाप का बेटे के माल में हक मिल्क है, लिहाजा अगर बाप बेटे की बांदी से सोहबत करता है और बाप को यह पता है कि मेरे लिए यह बांदी हराम है, मेरे लिए इसके साथ सोहबत जायज नहीं, इसके बावजूद जानते बूझते हुए भी अगर बाप उस बेटे की बांदी से सोहबत करता है तो उस पर हद जिना जारी नहीं की जा सकती। मालूम हुआ बाप का हक मिल्क है, जबी जानते बूझते हुए भी कि यह मेरे लिए हराम है, फिर भी बाप सोहबत कर ले तो भी उस पर हद जिना जारी नहीं होती। मालूम है बाप का हक मिल्क है, वरना तो हद जिना जारी होनी चाहिए थी जब बाप को मसले का भी पता है कि मेरे लिए बेटे की बांदी हलाल नहीं है भाई। तो कहते हैं लिअन्नहु सहत तज़व्वुज इंदना, हमारे नजदीक ये निकाह सही है, बाप अपने बेटे की बांदी से निकाह कर सकता है। खिलाफ लिशाफिई रहिमहुल्लाह, बखिलाफ इमाम शाफी रहमतुल्लाह के, लिखुलुविहा अन मिल्किल अबी, इसलिए क्योंकि ये बांदी, ये हमारी दलील चल रही है, दरमियान में सिर्फ इतना बताया, खिलाफ लिशाफी रहमतुल्लाह, बखिलाफ इमाम शाफी रहमतुल्लाह के, यानी उनके नजदीक ये निकाह जायज नहीं, बाकी हमारी दलील चल रही है। तो हमारे नजदीक ये निकाह सही है, लिखुलू विहा अन मिल्किल अभी, इसलिए क्योंकि ये बांदी खाली है बाप की मिल्कियत से। अल्लाह योरा है आपकी किताबों में, तो यहां याद रखो ये आम तौर पर अला तारा इस्तेमाल होता है। अला तारा, क्या आप देखते नहीं, यानी क्या आपको ये बात मालूम नहीं है, ये दलील देते हुए इस तरह दलील को जिक्र किया जाता है। तो उमूमन क्या इस्तेमाल होता है, अला तारा, क्या आप देखते नहीं, यानी कि आपको यह बात मालूम नहीं। और यहां गायब का सीगा है तो इसको मजहूल पढ़ लेंगे, अला योरा, यानी क्या यह बात मालूम नहीं है कि अनल इब्न मलकहा मिन कुल्ली वजहिन, के बेटा उसका मालिक है हर एतबार से। तो कहते हैं अला योरा, क्या यह बात मालूम नहीं है, अनल इब्न मलकहा मिन कुल्ली वजहिन, के बेटा जो है वो इस बांदी का मालिक है, मिन कुल्ली वजहिन, हर एतबार से। बेटा बांदी का मालिक है हर एतबार से जी। तो यह बात महाल है कि बाप बाज एतबार से मालिक हो, क्योंकि अगर बाप बाज एतबार से मालिक है, मालूम हो उस एतबार से फिर बेटा मालिक नहीं होगा। तवज्जो है, आप यह कहना चाहते हैं मसलन देखो यह बांदी है, अगर आप कहते हैं बेटा हर एतबार से इसका मालिक है, तो मालूम हुआ बाप किसी भी एतबार से इसका मालिक नहीं। और अगर आप यह कहते हैं कि बाप बाज एतबार से बांदी का मालिक है, तो मालूम हुआ बेटा उस एतबार से तो बांदी का मालिक नहीं। तो फिर हम यह नहीं कह सकते बेटा हर एतबार से बांदी का मालिक है, क्योंकि हर एतबार से तो वो मालिक है ही नहीं, बाज एतबार से तो बाप मालिक है, लेकिन बेटा हर एतबार से बांदी का मालिक है। जब हर एतबार से बेटा बांदी का मालिक है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि बाप बाज एतबार से बांदी का मालिक हो। तो कहते हैं अला योरा, क्या यह बात मालूम नहीं है, अन्नली बन मलकहा मिन कुल्ली वजहिन, के बेटा जो है वो इस बांदी का मालिक है हर एतबार से। फमिनल मुहाली अयम लिकहल अब मिन वजहिन, फमिनल मुहाल, ये याद रखो अरबी में लफ्ज है मुहाल भाई, मुहाल, और उर्दू में अलबत्ता ये महाल राइज है भाई, मीम के फतहा के साथ राइज हो गया है। तो उर्दू में यह अगरचे गलत राइज है, लेकिन बलागत का जाबता है, अल गलत राइजु अफसहु मिनल फसीह गैर राइजी, वो गलत जो राइज हो जाए वो ज्यादा फसीह होता है उस फसीह के मुकाबले में जो राइज ना हो भाई। बहरहाल उर्दू में आकर ये लफ्ज बदल गया है, अब इसी तरह इस्तेमाल करेंगे। तो कहते हैं फमिनल मुहाली अयम लिखा हल अब मिन वजहिन, लिहाजा ये बात महाल है कि बाप उसका मालिक हो जाए बाज एतबार से, जब बेटा हर एतबार से मालिक है तो ऐसा नहीं हो सकता कि बाप बाज एतबार से मालिक हो, वरना तो फिर आप ये कह ही नहीं सकते कि बेटा हर एतबार से मालिक है। तो जब आप ये मानते हैं कि बेटा हर एतबार से मालिक है तो आपको कहना पड़ेगा बाप किसी भी एतबार से मालिक नहीं है भाई। तो कहते हैं फमिनल मुहाल अयम लिखा हल अब उमी वजहिन, तो ये बात महाल है कि बाप उस बांदी का मालिक हो बाज एतबार से। वकदा यम लिखू मिन तसरुफात माला यबका माहा मिलकुल अबी लौकाना नीस। इधर देखिए, बेटा बांदी में ऐसे तसरुफात का मालिक है कि उन तसरुफात के साथ बाप की मिल्कियत बाकी रह ही नहीं सकती। बेटा बांदी में ऐसे तसरुफात कर सकता है कि उन तसरुफात की वजह से बाप की मिल्कियत बाकी रह ही नहीं सकती। मसलन बेटा ये बांदी किसी और को बेच देता है, जब बेटा किसी और को बांदी बेच सकता है तो उसके अंदर तो देखो वो दूसरा आदमी मालिक बन गया। अगर बाज एतबार से बाप मालिक होता तो बेटा खुद इस बांदी को बेच ही नहीं सकता था भाई। तो ये ऐसा तसर्रुफ है जिसके साथ बाप की मिल्कियत बाकी नहीं रह सकती। बेटे को शरीयत ने बांदी बेचने की इजाजत दी है, ये बेटा ये बांदी किसी को हिबा और तोहफा के तौर पर भी दे सकता है। ये ऐसे तसर्रुफात हैं कि इनके साथ बाप की मिल्कियत बाकी रह ही नहीं सकती भाई। नई बात समझ में आ रही भाई, देखो ना मैंने और आपने मिलकर एक चीज खरीदी है तो आप अकेले उस चीज को नहीं बेच सकते क्योंकि उसमें मेरी भी मिल्कियत है। तो यहां पर भी बेटा बांदी को अकेला बेच भी सकता है, हिबा भी कर सकता है। अगर इसमें बाप का भी हक मिल्क होता तो बेटा ऐसा नहीं कर सकता था भाई, लेकिन बेटे को यह तसर्रुफ शरीयत ने दिया है, वो ये कर सकता है। यह तसर्रुफ बतला रहा है कि बाप का कोई हक मिल्क नहीं है, क्योंकि इस तसर्रुफ के होते हुए तो बाप का हक मिल्क रह ही नहीं सकता। बेटा जिसको वो बांदी बेचेगा या जिसको हिबा करेगा वो पूरा मालिक बन जाएगा भाई जी। तो वो बाप की मिल्कियत किधर गई? अगर बाप की मिल्कियत थी इसके अंदर तो बेटे को शरीयत ने ऐसे तसर्रुफात का मालिक बनाया है कि उन तसर्रुफात के होते हुए बाप की मिल्कियत बाकी रह ही नहीं सकती। यह बतलाता है कि बाप का कोई हक मिल्क नहीं है बेटे के माल में, वरना बेटे को इन तसर्रुफात की इजाजत न होती भाई। तो कहते हैं वकदा यम लिकु मिन तसरुफात, इसी तरह बेटा ऐसे तसरुफात का मालिक है मा ला यबका माहा मिल्कुल अबी के, उनके साथ बाप की मिल्कियत बाकी नहीं रह सकती। लो काना, अगर वो होती, अगर बाप की मिल्कियत होती भी तो इन तसरुफात के साथ बाकी नहीं रह सकती थी। मालूम हुआ बाप की मिल्कियत नहीं है भाई, बाप का कोई हक मिल्क इसमें नहीं है, वरना बेटे को इन तसरुफात की इजाजत ही ना होती भाई। फदल्ला ज़ालिका अलंतिफा इ मिल्की ही, तो इस बात ने दलालत कर दी अलंतिफा इ मिल्की ही इस बात पर कि बाप की मिल्कियत मुंतफी है, बाप इस बांदी का मालिक नहीं। इल्ला अन्नहु यस्कुतुल हद्दुल शुभहती, भाई इमाम शाफी रहमतुल्लाह ने जिक्र फरमाया था कि बाप अगर जानते बूझते हुए भी बेटे की बांदी से सोहबत कर ले उस पर फिर भी हद नहीं आती। मालूम हुआ बाप का हक मिल्क है, वरना तो उस पर हद आनी चाहिए थी। तो उसका जवाब पहले मैं जिक्र कर चुका हूं भाई कि हुदूद और किसास जो हैं वो अदना शुबे की वजह से भी साकित हो जाते हैं। यहां पर भी बाप से हद इसलिए साकित हो गई है कि शुबहे मिल्क आ गया है, क्योंकि हुजूर अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया था, अंता व मालुकली अबी का, तू और तेरा माल तेरे बाप के हैं। तो हुजूर अलैहिस्सलाम के इस कौल की वजह से शुबहे मिल्क आ गया, जब शुबह मिल्क आ गया तो इस शुबे की वजह से हद साकित हो जाएगी, क्योंकि हुदूद और किसास शुबे की वजह से साकित हो जाते हैं, इसलिए बाप पर हद नहीं आएगी भाई। तो इस शुबह मिल्क की वजह से बाप से हद साकित हो जाएगी, इस वजह से हद साकित नहीं हुई कि बाप का हक मिल्क है। बात समझ में आ गई? तो कहते हैं इल्ला अन्नहु यस्कुतुल हद्दुल शुबहती, मगर यह कि यह हद जो है साकित हो जाती है शुबे की वजह से। फ़इदा जाज़न निकाह सारा मा उहू मसूनन बिही, पस जब बाप का इस बेटे की बांदी से निकाह जायज है, सारा मा उहू मसूनन बिही, तो इससे बाप का पानी महफूज हो गया। पानी के महफूज होने का क्या माना किया मैंने, यानी हां आगे और नस्ल पैदा हो उसका नसब साबित हो सके, वरना तो मां भी जाया और आगे बच्चा भी जाया होगा भाई। तो कहते हैं फैदा जाजन निकाह सारा मा उहू मसूनन भी ही, तो जब बाप का बेटे की बांदी से निकाह जायज हो गया तो बाप का पानी महफूज हो गया इस निकाह की वजह से। जब निकाह की वजह से मां महफूज हो गया है तो अब मिल्कियत को साबित करने की कोई हाजत नहीं। तो जब उसका मां महफूज हो गया फलम यसबुत मिल्कुल यमीनी, तो बाप के लिए मिलके यमीन साबित नहीं होगी। फला तसीर उम्म वलदिन लहू, तो फिर ये बांदी उसके उम्मे वलद भी नहीं बनेगी, क्योंकि बांदी जब बाप की ममलूक ना हुई तो फिर उसकी उम्मे वलद भी नहीं हो सकती। याद रखो गुलाम और बांदी के लिए मिलके यमीन का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। कुरान में भी अल्लाह फरमाते हैं फमिम्मा मलकत ऐमानुकुम, जिनके तुम्हारे दाहने हाथ मालिक हैं। तो ये मिलके यमीन भाई ये मजाजन निस्बत है यमीन की तरफ, यमीन दाएं हाथ को कहते हैं, यमीन दाएं, और जैसे दाएं हाथ में कुव्वत होती है तो ये जो गुलाम और बांदी की मिल्कियत है इसकी निस्बत दाएं हाथ की तरफ कर दी गई, ये बतलाने के लिए कि ये गुलाम और बांदी पर आका का पूरा कब्जा है और ये पूरे तौर पर आका के इख्तियार में है। इसलिए इस मिल्क को मिलके यमीन कहते हैं ताकि पता चल जाए कि ये आका के पूरे इख्तियार में है और आका का इन पर पूरा कब्जा है भाई। तो बाप ने निकाह किया है तो ये निकाह सही हो गया, जब निकाह सही हुआ तो मां महफूज हो गया, जब मां महफूज हो गया तो फिर अब मिलके यमीन को साबित करने की जरूरत नहीं, जब मिलके यमीन साबित नहीं तो अब ये बांदी बाप की उम्र वलद भी नहीं बनेगी। तो ये माना है। फिर तर्जमा देख लीजिए फैदा जाजन निकाह सारा मा उहु मसूनन भी, जब ये निकाह जायज है तो बाप का मां जो है वो महफूज हो गया इसके जरिए। फलम यसबुत मिल्कुल यमीनी, तो लिहाजा उसके लिए मिलके यमीन भी साबित नहीं होगी। फला तसीर उम्मा वलदिन लहू, तो लिहाजा ये बांदी उसकी उम्मे वलद भी नहीं बनेगी। वला कीमत अलैहि फीहा, और इस बांदी में बाप पर कीमत भी नहीं आएगी क्योंकि बाप तो उसका मालिक ही नहीं है, मालिक तो अभी भी बेटा ही है। तो कहते हैं वला कीमत अलैहि फीहा वला फी वलदिहा, और ना तो इस बांदी के अंदर बाप पर कीमत आएगी, वला फी वलदिहा और ना उसके बच्चे में। लिअन्नहु लम यमलिक हुमा, इसलिए क्योंकि बाप तो इन दोनों का मालिक नहीं है। व अलैहिल महरु, और बाप पर महर लाजिम होगा। लिल्तिजामी ही बिन निकाही, इसलिए क्योंकि बाप ने निकाह के जरिए खुद अपने ऊपर महर को लाजिम किया है। वबलदुहा हुर्रुन, और इस बांदी का जो बच्चा है वो आजाद होगा। लिअन्नहु मलकहु अखूहु, इसलिए क्योंकि इस बच्चे का मालिक जो है वो इसका भाई है। फअतका अलैहि बिलकराबती, तो ये बच्चा उस पर आजाद हो जाएगा बिलकराबती, रिश्तेदारी की वजह से। बात समझ में आ गई। चलिए बस भाई, हादा हुवल मराम, वल्लाहु आलम बिहकीकतिल कलाम।